देखिए भाई सबक आगे, व मन खला अबनतहु वही असगीरतुम बिमालिहा लम यजुज अलैहा लिअन्नहु ला नज़र लहा फीह इदिल बुज़ु फी हालतिल खुरूज गैर मुतक़व्विमिन वल बदलु मुतक़व्विमुन बिखिलाफ निकाह लिअन्नल बुज़ु मुतक़व्विमुन इंदद दुखूल ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث ونكاح المريض بمهر المثل من جميع المال. بھئی گزشتہ سبق میں صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا اگر خاوند نے بیوی سے کہا انت طالق على الف على انی بالخیار او على انك بالخیار ثلاثة ایام بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق ہے 1000 درہم کی شرط پر اور مجھے اختیار ہوگا 3 دن تک تو اپنے لیے خیار شرط رکھ لیا 3 دن تک اور یا بیوی کو خیار شرط دیا کہ تجھے 1000 درہم کی شرط پر طلاق ہے اور ساتھ تجھے 3 دن کا اختیار ہے تم اس کو فسخ کرنا چاہو تو فسخ کر سکتی ہو تو بیوی نے قبول کر لیا تو امام صاحب کے نزدیک اگر خاوند نے خیار شرط اپنے لیے رکھا ہے تو وہ خیار باطل ہے طلاق تو واقع ہو جائے گی البتہ خاوند کا اپنے لیے خیار رکھنا باطل ہے اور اگر بیوی کے لیے خیار رکھا ہے تو بیوی کا خیار جائز ہے تو اگر اس نے اس مدت کے دوران اس طلاق کو باطل کر دیا تو طلاق باطل ہو جائے گی اور عوض بھی کچھ نہیں آئے گا اور اگر مدت گزر گئی اور اس نے اس کو باطل نہ کیا تو طلاق بھی واقع ہو گئی اور اس پر 1000 بھی لازم ہو گئے تو امام صاحب کے نزدیک خاوند کے لیے خیار جائز نہیں بیوی کے لیے خیار رکھنا جائز ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں خیار نہ خاوند کے لیے جائز ہے نہ بیوی کے لیے جائز ہے لہذا دونوں صورتوں میں خیار تو باطل ہو جائے گا البتہ بیوی نے قبول کر لیا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور بیوی پر 1000 درہم لازم ہو جائیں گے صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو خیار شرط ہے اس کو وضع کیا گیا ہے فسخ کے لیے اور یہاں نہ خاوند کا فعل فسخ کو قبول کرتا ہے اور نہ بیوی کا فعل جو ہے فسخ کو قبول کرتا ہے خاوند کا فعل تعلیق ہے یعنی یمین ہے اور یمین ایک دفعہ ہو جائے تو اس سے رجوع نہیں ہو سکتا یعنی اس کو فسخ نہیں کیا جا سکتا خاوند نے کیا کہا کہ تجھے طلاق ہے 1000 کی شرط پر تو دیکھو یہ یمین ہے تعلیق ہے لہذا یہ فسخ نہیں ہو سکتی لہذا خاوند کا اپنے لیے خیار رکھنا جائز نہیں اور بیوی نے جو ہے قبول کیا ہے یعنی فعل شرط کو وجود دیا کس کو فعل شرط آپ کے ذہن میں بار بار یہ مسائل ذکر ہو رہے ہیں شاید آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ بیوی کے قبول کی تو شرط نہیں ذکر کی اس نے تو 1000 درہم کی شرط رکھی ہے تو جواب یہ کہ بات وہی ہے وہ 1000 درہم بیوی پر لازم ہونے ہیں اور کسی کے مرضی کے بغیر اس پر مال لازم نہیں ہو سکتا تو گویا بیوی کا قبول کرنا ضروری ہے بیوی قبول کرے گی تو پھر لہذا اس پر یہ 1000 لازم ہوں گے ویسے لازم نہیں تو لہذا بیوی نے قبول کیا ہے اور قبول شرط تھا تو شرط کو بیوی نے وجود دیا اور شرط کو ایک دفعہ وجود دے دیا جائے تو پھر اس سے بھی رجوع نہیں ہو سکتا اس کو فسخ نہیں کیا جا سکتا لہذا بیوی نے کہہ دیا مجھے قبول ہے تو ساتھ ہی طلاق ہو گئی اور اس پر 1000 درہم بھی لازم ہو گئے بعد میں بیوی کہتی ہے نہیں نہیں میں اپنے قول سے رجوع کرتی ہوں نہ مجھے طلاق کی حاجت ہے اور نہ میں تمہیں پیسے دوں گی نہیں بھائی آپ نے فعل شرط کو وجود دے دیا اب طلاق بھی ہو گئی اور آپ پر 1000 درہم بھی لازم ہو گئے تو شرط کو جب ایک دفعہ وجود دے دیا جائے تو اس میں رجوع نہیں ہو سکتا یعنی اس کو فسخ نہیں کیا جا سکتا تو صاحبین فرماتے ہیں خاوند کا فعل ہے یمین وہ بھی فسخ کو قبول نہیں کرتا اور بیوی کا فعل جو ہے وجود شرط ہے کہ اس نے شرط کو وجود دیا ہے وہ بھی فسخ کو قبول نہیں کرتا اور خیار شرط تو فسخ کے لیے ہوتا ہے لہذا یہاں خیار آ ہی نہیں سکتا نہ خاوند کے لیے اور نہ بیوی کے لیے لہذا خیار تو باطل ہو گیا البتہ عورت نے چونکہ قبول کر لیا ہے تو طلاق بھی واقع ہو گئی اور اس پر 1000 درہم بھی لازم ہو گئے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ خلع کے اندر دو جانبیں ہیں बीवी की तरफ से देखें तो ये बैअ है, वो माल देकर अपनी जात को खावन से खरीद रही है, अपने आप को आजाद करवा रही है, और खावन की तरफ से देखें तो ये यमीन है। खावन क्या कर रहा है, 1000 की शर्त पर तलाक को मुअल्लक कर रहा है। तो लिहाजा बीवी की तरफ से जब ये यमीन है तो बीवी के लिए खियारे शर्त भी जायज होगा। जैसे बैअ के अंदर मुश्तरी के लिए खियारे शर्त जायज होता है, तो यहां भी बीवी के लिए खियारे शर्त जायज होगा। और नीज इसकी दलील भी मौजूद है कि बीवी के लिए यह बैअ के दर्जे में है कि अगर बीवी खुला की बात करती है तो बीवी रुजू भी कर सकती है। खावन जब खुला की बात करे कि मैं तुझसे खुला करता हूं 1000 की शर्त पर, तो फिर इस सूरत के अंदर ये यमीन है, खावन इससे रुजू नहीं कर सकता। और नीज ये मजलिस पर भी बंद नहीं है, तो मजलिस के बाद भी औरत इसको कबूल कर सकती है। जबकि बीवी की तरफ से अगर खुला की बात आए या तलाक अला इवस की बात आए तो ये बैअ है, और बैअ के अंदर ईजाब जो है वो मजलिस तक ही रहता है, मजलिस के अंदर कबूल जरूरी है, और नीज ईजाब के अंदर रुजू भी हो सकता है। तो लिहाजा बीवी के लिए तो खियारे शर्त जायज होगा, खावन के लिए खियारे शर्त जायज नहीं, क्योंकि खावन की तरफ से ये यमीन है भाई। और फिर साहिब हिदायत ने आपको ये भी बतलाया कि अगर आका गुलाम की आजादी को इसी तरह 1000 पर मुअल्लक करता है तो वहां भी यही सूरत होगी। आका अगर अपने लिए खियारे शर्त रखेगा तो वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आका की तरफ से ये यमीन है। और अगर गुलाम के लिए खियारे शर्त रखेगा तो गुलाम के लिए ये बैअ के दर्जे में है कि वो माल देकर अपने आप को छुड़वा रहा है, आजाद करवा रहा है, तो गुलाम के लिए खियारे शर्त जायज होगा भाई। और फिर इसी तरह साहिब हिदायत ने मसला जिक्र फरमाया कि जिस शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि मैंने कल तुझे तलाक दी थी 1000 दिरहम की शर्त पर तो तूने कबूल नहीं किया था, बीवी कहती है नहीं मैंने कबूल कर लिया था, तो इस सूरत में खावन का कौल मोतबर है। वजह यह कि खावन तालीक का इकरार कर रहा है, और तालीक का इकरार करने से शर्त का इकरार लाजिम नहीं आता भाई। तालीक खावन ने करनी है और शर्त को बीवी ने वजूद देना है, तो तालीक का इकरार करने से यह लाजिम नहीं आता कि शर्त भी इसके साथ जरूरी हो भाई। जबकि इसके मुकाबले में अगर एक शख्स दूसरे शख्स से कहता है कि ये गुलाम मैंने तुम्हें कल 1000 दिरहम के बदले बेचा था तो तुमने कबूल नहीं किया था, तो वो खरीदार कहता है नहीं मैंने कबूल कर लिया था, तो इस सूरत के अंदर जो खरीदार है उसका कौल मोतबर है। वजह यह कि जब बेचने वाले ने कहा कि मैंने कल तुम्हें ये गुलाम बेचा था तो बेचने के अंदर ईजाब भी होता है और कबूल, वैसे तो बेचना यानी बैअ वाला फेल नहीं पाया जाता, तो जब उसने बैअ का इकरार कर लिया तो साथ ही दूसरे के कबूल का भी इकरार कर लिया, और फिर बाद में अब कहता है कि तूने कबूल नहीं किया था, तो अब इस कबूल से वो रुजू करना चाहता है। तो एक दफा जब चीज का इकरार कर लिया जाए तो फिर उससे रुजू नहीं हो सकता भाई। फर्क समझ में आया? तो यहां पर मुश्तरी का कौल मोतबर होगा जबकि पहले मसले में खावंद का कौल मोतबर होगा भाई। और फिर उसके बाद मुबारअत का जिक्र आया था, साहिब हिदायत ने आपको बतलाया कि मुबारअत भाई ये बराअत से है। किससे है? बराअत से बाब मुफाअला है। बराअत का माना है बरी करना, माफ करना, तो मुबारअत यानी दोनों जानिब से बराअत आए भाई, दोनों एक दूसरे के हुकूक माफ कर दें, इसको क्या कहते हैं? मुबारअत। खावन बीवी के तमाम हुकूक माफ कर देता है और बीवी खावन के तमाम हुकूक माफ कर देती है, यानी वो जो निकाह से मुताल्लिक हैं उसके अंदर मसलन खावन के जिम्मे महर है या कोई नफका वगैरह है जो काजी ने मुकर्रर किया था और इसने अभी तक अदा नहीं किया, तो ये सारे हुकूक मुबारअत के अंदर माफ। इसी तरह इमाम साहब फरमाते हैं खुला का भी यही हुक्म है, मुबारअत में भी निकाह से मुताल्लिक तमाम हुकूक साकित हो जाते हैं और खुला के अंदर भी निकाह से मुताल्लिक तमाम हुकूक साकित हो जाते हैं। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुबारअत और खुला में कोई हक साकित नहीं होगा सिवाय उन हुकूक के जिनको ये बाकायदा जिक्र कर दें। तो जिनको ये जिक्र करेंगे वो माफ होंगे, जिनको जिक्र नहीं करेंगे वो माफ नहीं होंगे भाई। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह वो मुबारात के अंदर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के साथ हैं और खुला के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के साथ हैं। वो फरमाते हैं कि मुबारात मुतलक है और इसके साथ कोई कैद नहीं, ये तो तकाजा करता है दोनों का एक दूसरे पर हर हर हक साकित होना चाहिए, लेकिन हमने इसको निकाह के साथ खास कर दिया इसलिए क्योंकि निकाह का झगड़ा चल रहा है इस वक्त, लिहाजा बेअ और शिरा की वजह से मियां बीवी पर अगर एक दूसरे के लिए माल वाजिब था वो उसी तरह रहेगा, अलबत्ता निकाह के हुकूक एक दूसरे से साकित हो जाएंगे। जबकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिस तरह मुबारात मुतलक है इसी तरह खुला भी मुतलक है, और खुला का माना है जुदा होना, तो यहां पर भी कामिल जुदाई तब आएगी जब तलाक के साथ साथ निकाह के हुकूक भी एक दूसरे से साकित हो जाएं, फिर कामिल तौर पर जुदाई आ गई। तो लिहाजा चाहे मुबारात हो चाहे खुला, ये जब मुतलक है तो दोनों के एक दूसरे पर तमाम हुकूक साकित हो जाएंगे भाई। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। वमन खला बनतहु वही सगीरा तुम बीमालिहा लम यजुज अलैहा। सूरत मसला ये कि बाप ने अपनी नाबालिग बेटी का कहीं निकाह करवा दिया था, अब बाद में किसी वजह से वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहता है, तो बेटी की तरफ से बाप जो है वो खुला करता है, बाप जो है वो बेटी की तरफ से खुला करता है और खुला के अंदर वो बेटी ही का माल देना चाहता है। मसलन वो नाबालिग बेटी है लेकिन उसको कहीं से माल मिल गया, मसलन उसकी मां का इंतकाल हुआ तो उसकी वरासत में माल उसको मिला, या किसी और रिश्तेदार ने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद में से इतना माल इस सगीरा को दे देना, तो अब सगीरा का माल है, अब बाप खुला के अंदर सगीरा का माल देना चाहता है, कहते हैं ये जायज नहीं। तो बाप सगीरा का माल नहीं दे सकता खुला के अंदर। वजह यह कि बाप को शरीयत ने सगीर और सगीरा के माल पर विलायत दी है, बाप को सगीर और सगीरा के माल पर शरीयत ने विलायत दी है, जरूरत के मुताबिक बाप उनके माल में से उन पर खर्च कर सकता है, उनके लिए कोई चीज खरीद सकता है, उनकी कोई चीज बेच सकता है, लेकिन उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए भाई। तो शरीयत ने बाप को जो ये सगीर और सगीरा के माल पर विलायत दी है ये शफकत की वजह से है, और यहां खुला के अंदर वो सगीरा का माल देगा तो इसमें कोई शफकत नहीं, और जब शफकत नहीं तो बाप को यहां विलायत भी हासिल नहीं। जहां शफकत होगी बाप को विलायत होगी, जहां शफकत नहीं बाप को विलायत भी नहीं। भाई यहां शफकत किस तरह नहीं है, कहते हैं देखो खुला के अंदर बुजा मिल्कियत से निकलता है, खावंद बुजा पर से अपनी मिल्कियत खत्म कर रहा है, और आपको साहिब हिदाया ने बतलाया था कि मिल्कियत से निकलते वक्त बुजा गैर मुतकविम होता है। जब कोई शख्स निकाह करता है यानी बुजा मिल्कियत के अंदर दाखिल होता है वहां तो महर देना जरूरी है, महर के बगैर बुजा मिल्कियत में दाखिल नहीं हो सकता, तो बुजा जो है मिल्कियत में दाखिल होते वक्त तो मुतकविम है लेकिन मिल्कियत से निकलते वक्त मुतकविम नहीं। तो इस वक्त खुला हो रहा है, बुजा मिल्कियत से निकल रहा है और ये गैर मुतकविम है, और इसके बदले में इस बाप सगीरा का माल देना चाहता है और माल तो मुतकविम है, तो एक मुतकविम चीज अदा करना गैर मुतकविम चीज के लिए इसमें किसी भी लिहाज से शफकत नहीं है, लिहाजा बाप को यह विलायत हासिल नहीं होगी भाई। कहते हैं वमन खला बनतहु वही सगीरा तुम बीमालिहा, और जिसने अपनी बेटी का खुला किया इस हाल में कि वो सगीरा है यानी नाबालिगा है और ये खुला किया है बीमालिहा उस बेटी के माल के इवज लम यजुज अलैहा, तो ये उस बेटी पर जायज नहीं, बाप उसका माल नहीं दे सकता। लिअन्नहु ला नज़रा लहा फीही, इसलिए क्योंकि इसके अंदर बेटी के लिए कोई शफकत नहीं है। इज़िल बुज़ु फी हालतिल खुरूज गैरु मुतकविमिन, इसलिए क्योंकि बुज़ा जो है मिल्कियत से निकलने की हालत में गैर मुतकविम होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। वल बदलु मुतकविमुन, और जो बदल बाप देगा यानी जो सगीरा का माल देगा वो तो मुतकविमुन, वो तो मुतकविम है तो गैर मुतकविम के लिए मुतकविम को खर्च करना ये इसमें किसी तरह भी शफकत नहीं है। बेखिलाफ इन निकाही लिअन अलबुज़ा मुतकविमुन इंदद दुखूल, बखिलाफ निकाह के, इसलिए क्योंकि बुज़ा मुतकविम होता है इंदद दुखूल, मिल्कियत में दाखिल होते वक्त। भाई इसके मुकाबले में बाप अपने नाबालिग बेटे का निकाह करवाता है और निकाह करवाता है उसी नाबालिग बेटे के माल के इवज, यानी महर में वही बेटे का माल दिया जाएगा बीवी को, तो ये जायज है। वजह ये कि निकाह के अंदर बुज़ा मिल्कियत में दाखिल होता है और बुज़ा मिल्कियत में दाखिल होते वक्त तो मुतकविम है, लिहाजा बाप अगर बेटे का माल बतौर महर के लगा रहा है तो दूसरी तरफ से भी एक मुतकविम चीज आ रही है, लिहाजा महरे मिसल तक ऐसा करना जायज है। यानी बाप नाबालिग बेटे का निकाह करवाता है और कितना महर मुकर्रर करता है, महरे मिसल तक या उससे कम, फिर तो जायज है, महरे मिसल से जायद में जायज नहीं है क्योंकि उसमें शफकत नहीं है। तो कहते हैं बेखिलाफ इन निकाह, बखिलाफ निकाह के लिअन अलबुज़ा मुतकविमुन इंदद दुखूली, के बुज़ा मुतकविम होता है मिल्कियत में दाखिल होते वक्त, लिहाजा उसकी विलायत बाप को हासिल होगी। भाई ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث ونكاح المريض بمهر المثل من جميع المال, कहते हैं इसी वजह से अगर एक औरत है वो मरजुल मौत में मुबतला है और वो अपने खावन से खुला करती है और खुला के अंदर माल देना चाहती है तो ये खुला कर रही है और खुला के अंदर तो बुज़ा मिल्कियत से निकलता है और बुज़ा का मिल्कियत से निकलना गैर मुतकविम है। भाई तो जब ये गैर मुतकविम है और वो मरजुल मौत में जो औरत है वो माल देना चाहती है तो यूं समझा जाएगा गोया ये मुफ्त में माल दे रही है। क्या कर रही है? मुफ्त में, हालांकि ये मरजुल मौत में मुबतला है और मरजुल मौत में वारिसों का हक उसके माल के साथ मुतालिक हो चुका है, अब कुछ दिनों के बाद ये माल उनकी तरफ मुंतकिल होने वाला है, तो मरजुल मौत में जो खुला कर रही है औरत तो ये इसी तरह हुआ जैसे वो माल मुफ्त में दे रही है, तो लिहाजा ये सुलुस तक जायज होगा, इससे जायद माल में नहीं, वो अपने माल के सुलुस तक जो है उस पर खुला कर सकती है, उससे जायद में नहीं। ये इसी तरह है जैसे वसीयत, वसीयत में भी किसी को वैसे ही माल दिया जाता है तो वो भी जैसे सिर्फ सुलुस तक जायज होती है उससे ज्यादा की वसीयत जायज नहीं। तो यहां पर भी औरत जो मरजुल मौत में मुबतला है वो खुला करके खावन से जान छुड़ाना चाहती है तो वो सुलुस तक ही जायज होगा, इससे ज्यादा माल पर वो खुला नहीं कर सकती। जबकि इसके मुकाबले में एक मर्द है वो मरजुल मौत में मुबतला है और मरजुल मौत के अंदर वो एक औरत से निकाह करता है भाई, और निकाह के अंदर महर देना पड़ता है, तो अब यहां पर बुज़ा चूंकि मिल्कियत में दाखिल हो रहा है तो वह मुतकविम है, तो खावन पर जो महर लाजिम आएगा वह मुफ्त में नहीं लाजिम आ रहा बल्कि बदले में एक मुतकविम चीज आ रही है, लिहाजा महरे मिसल तक। बुज़ा की कीमत कितनी है? महरे मिसल होती है उस जैसी औरतों का जो महर होता है, तो लिहाजा यहां महरे मिसल तक खावन का यह निकाह जायज होगा, चाहे इसमें खावन का सारा माल ही क्यों ना खत्म हो जाए, क्योंकि यहां पर जो खावन मरजुल मौत में है निकाह कर रहा है उस पर महर लाजिम हो रहा है लेकिन महर मुफ्त में लाजिम नहीं हो रहा बल्कि बदले में एक मुतकविन चीज आ रही है, मुतकविन चीज का वो मालिक बन रहा है। तो यह माना है वलिहादा युअतबरु खुलउल मरीजति मिनस सुलुसी, और इसीलिए मरीजा का खुला मुअतबर है सुलुस माल में से, व निकाहुल मरीजी भी महरिल मिस्ल मिन जमीउल माल, और मरीज यानी वो शख्स जो मरजुल मौत में मुबतला है उसका निकाह मुअतबर है भी महरिल मिस्ल महरे मिसल के बदले में, मिन जमीउल माल तमाम माल में से। वह इदालम यजूज, जी अब फिर मतन वाले मसले पर आइए, बाप अपनी नाबालिग सगीरा बेटी का खुला करता है उसी के माल के साथ तो वो उन्होंने आपको बतला दिया लम यजूज अलैहा, वो उस बेटी पर जायज नहीं, यानी उसके माल को बाप खर्च नहीं कर सकता। तो कहते हैं वह इदा लम यजूज, और जब ये खुला जायज नहीं है ला यस्कुतुल महरू, तो महर साकित नहीं होगा। अभी आपको बताया भाई साहिब हिदाया ने गुज़श्ता मसले के अंदर कि इमाम साहब के नजदीक खुला के अंदर मियां बीवी के जितने हुकूक एक दूसरे पर हैं वो सब साकित हो जाएंगे, हत्ता के महर अगर आप अभी तक अदा नहीं किया वो भी क्या हो जाएगा, साकित हो जाएगा। तो लिहाजा यहां पर भी बाप ने खुला किया है खावंद के साथ तो ये खुला जायज नहीं, जब खुला जायज नहीं तो बेटी का जो महर है खावंद के जिम्मे वो साकित नहीं होगा, खावंद को वो महर देना पड़ेगा भाई, बाप के साकित करने से वो साकित नहीं होगा। तो कहते हैं वह ईदा लम यजूस, और जब यह खुला जायज नहीं है लायस कुतुल महरू तो महर साकित नहीं होगा, यानी खावन को देना पड़ेगा। व लायस तहक मालहा, और खावन भी उस सगीरा के माल का मुस्तहक नहीं होगा। बाप ने तो खुला किया कि सगीरा के माल में से मैं तुम्हें 1000 दिरहम दूंगा, लेकिन खावन इस सगीरा के माल का मुस्तहक नहीं है, क्योंकि इस तरह खुला करना जायज ही नहीं है कि बाप गैर मुतकविम के बदले मुतकविम 1000 दिरहम अदा कर रहा है। तो वला यस्तहिक मालहा, तो खावन जो है वो सगीरा के माल का मुस्तहिक नहीं होगा। सुम्म यकउ तलाकु फी रिवायतिन वफी रिवायतिन ला यकउ, भाई अब बाप ने खुला तो कर लिया लेकिन साहिब हिदायत ने बतलाया ये खुला जायज नहीं, लिहाजा महर भी साकित नहीं, वो भी खावन के जिम्मे है, उसको अदा करना पड़ेगा। और नीज खावन माल का मुस्तहक भी ना हुआ सगीरा पर, लेकिन क्या तलाक वाकई हुई या नहीं, तो कहते हैं इस सिलसिले में दो रिवायतें हैं फुकहाए किराम की। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने तो मतन में सिर्फ इतना लिखा है लम यजुज अलैहा, ये उस पर जायज नहीं, मालूम हुआ बाप इस तरह माल नहीं दे सकता उसका। लेकिन क्या तलाक भी वाकई होगी या नहीं, तो बस फुकहा फरमाते हैं हां तलाक वाकई हो जाएगी, तलाक वाकई हो जाएगी, इसलिए क्योंकि खावंद ने खुला किया है 1000 की शर्त पर उस सगीरा के माल में से, तवज्जो है, और बाप ने क्या कर लिया, कबूल कर लिया, तो ये गोया खावंद ने 1000 दिरहम के एवज खुला को मुअल्लक किया था बाप के कबूल करने पर, और बाप ने कबूल कर लिया, और जब शर्त पाई गई तो मशरूत यानी तलाक भी वाकई हो गई। बात समझ में आ गई, अगरचे माल लाजिम नहीं हुआ सगीरा पर लेकिन तलाक के लिए जो शर्त थी वो तो पाई गई, जब शर्त पाई गई तो तलाक भी वाकई हो गई भाई। जबकि दीगर फुकहा फरमाते हैं दूसरी रिवायत यह है कि तलाक भी वाकई नहीं होगी, वजह यह कि यह खुला हो रहा है सगीरा का और इसके अंदर सगीरा का कबूल चाहिए भाई, किसका, सगीरा, और बाप उसकी तरफ से उसका नायब होकर कबूल कर रहा है, हालांकि शर्त के अंदर नयाबत जारी नहीं होती, शर्त में कोई एक शख्स दूसरे का नायब नहीं हो सकता। मसलन खावंद ने बीवी से कहा कि तुझे मैं 1000 की शर्त पर तलाक देता हूं, 1000 दिरहम की शर्त पर मैं तुम्हें तलाक देता हूं, अब बगैर कबूल किए तो यह 1000 दिरहम बीवी पर लाजिम नहीं है। बीवी अभी नहीं बोली कि उसकी कोई सहेली साथ बैठी है या उसकी वालिदा बैठी हुई है या कोई और बैठा हुआ है उसका करीबी अजीज, वो जवाब देता है कि मैं इसकी तरफ से कबूल करता हूं, इस बीवी की तरफ से मैं कबूल करता हूं। देखो अब वो नाइब बन गया उसका, लेकिन शर्त के अंदर नयाबत जारी नहीं होती, शर्त के अंदर एक शख्स दूसरे का नाइब नहीं हो सकता भाई, बीवी ही का कबूल जरूरी है, उसके नाइब के कबूल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या दूसरी मिसाल ले लें, उससे और बात आपको समझ में आ जाएगी। खावन ने बीवी से कहा अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो बीवी की तरफ से कोई रिश्तेदार बोलता है, कहते है, मैं इसकी तरफ से नाइब होकर घर में जाता हूं, तो आप क्या हुक्म लगाएंगे कि ये नाइब के जाने से तलाक वाकई होगी, नहीं होगी, क्योंकि खावन ने बीवी के जाने पर तलाक मुअल्लक की है और शर्त के अंदर कोई किसी का नाइब नहीं हो सकता, जिसकी शर्त लगाई गई है उसी को वो फेल करना पड़ेगा भाई। तो यहां पर भी खुला किसका हो रहा है, बेटी का, और कबूल कौन कर रहा है, बाप, और बाप नाइब होने के एतबार से कबूल कर रहा है, और शर्त के अंदर तो नियाबत जारी नहीं होती, कोई किसी का नाइब नहीं हो सकता, चुनाचे बाज फुकहा फरमाते तलाक वाकई नहीं होगी भाई, बाप के कबूल करने से तलाक वाकई नहीं। जबकि बाज फुकहा ने बतलाया कि खावन बाप के साथ बात कर रहा है तो बाप की कबूलियत की वो शर्त लगा रहा है और बाप ने तो कबूल कर लिया है, लिहाजा तलाक वाकई हो जाएगी। और साहिब हिदायत भी आपको बतलाएंगे कि ये वाला कौल ज्यादा सही है, जो पहला कौल था कि तलाक वाकई हो जाएगी, तलाक वाकई हो जाएगी, ये ज्यादा सही है। दूसरा कौल भी सही है लेकिन ये वाला ज्यादा सही है। कहते हैं सुम्मा यकाउ तलाक फी रिवायतिन, फिर तलाक वाकई हो जाएगी एक रिवायत में, वफी रिवायतिन ला यकाउ, और एक रिवायत में है कि तलाक वाकई नहीं होगी। वल अव्वलु असहु, और पहला कौल ज्यादा सही है यानी तलाक वाकई हो जाएगी। दूसरा कौल भी सही है, वो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन पहला कौल ज्यादा सही है। वजह क्या, पहला कौल ज्यादा सही क्यों, तो उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं लिअन्नहु तालिकुम बिशर्ति कबूली ही, इसलिए क्योंकि ये तलाक को मुअल्लक करना है बाप के कबूल करने की शर्त पर। खावन ने तलाक की तालीक की है बाप के कबूल की शर्त पर, तो लिहाजा बाप ने तो कबूल कर लिया है, और जब शर्त पाई गई तो मशरूत भी पाया गया। फयोतबरु बिताली की बिसाइरी शुरूती, तो इसको कियास किया जाएगा बाकी शर्तों के साथ तालीक पर, बाकी शर्तों के साथ जो तालीक की जाए उस पर इसको कियास किया जाएगा। भाई फयोतबरु, तो इसको कियास किया जाएगा बिताली की बिसाइरी शुरूती बाकी शर्तों के साथ तालीक पर, बाकी शर्तों के साथ तालीक पर इसको कियास किया जाएगा, और वहां जब शर्त पाई जाए तो मशरूत भी आ जाता है। भाई आगे देखिए, व इन खालाहा अला अल्फिन अला अन्नहु ज़ामिनुन फलखुलु वाकिउ वल अल्फु अलल अब। दूसरी सूरत, बाप जो है वो जामिन बन गया खुला के इवज का कि मैं दूंगा, मैं जामिन हूं भाई, तो याद रखो इस सूरत के अंदर खुला वाकई हो जाएगा। पहली सूरत में सगीरा के माल में से ही खुला कर रहा था, और अब बाप खुद जामिन बन गया है। और याद रखो, जामिन बनने का यह माना नहीं है कि असल माल सगीरा पर आया है और बाप सिर्फ एक जामिन बन गया है, नहीं नहीं, सगीरा पर खावन माल का मुस्तहिक हो ही नहीं सकता भाई, सगीरा पर खावान माल का मुस्तहिक हो ही नहीं सकता भाई। वजह यह कि वो सगीरा है, ना बालिगा है, ना समझ है भाई, तो लिहाजा उस पर यह गोया एक तरह का जुर्माना लाजिम आ रहा है, उसका माल जाएगा, वो तो मुतकविम है, और बुजा मिल्कियत से निकलते हुए वो तो गैर मुतकविम होता है। इसीलिए उस गुज़श्ता मसले में साहिब हिदाया ने बतलाया था कि खावन सगीरा के माल का मुस्तहिक नहीं बनेगा, लेकिन यहां जमानत बाप दे रहा है। तो जामीन किसको कहते हैं कि असल माल किसी और पर हो और जामीन से भी मुतालबा हो सके, लेकिन यहां असल माल ही बाप पर आ जाएगा जी। असल माल ही किस पर आ जाएगा, बाप पर आ जाएगा, तो लिहाजा यहां पर जामीन होने का यह माना नहीं कि वो उसका कफील बन गया है बेटी का, बल्कि उसका माना यह है कि उसने अपने ऊपर ही माल को लाजिम कर लिया, वो अदा करेगा खावंद को भाई। तो कहते हैं वह इन खालाहा अला अल्फिन, और अगर खावंद ने खुला कर लिया सगीरा से हजार की शर्त पर, अला अन्नहु जामिनुन, इस शर्त पर के बाप जो है वो जामिन होगा, वो बदले खुला अदा करेगा, फल खुलु वाकिउन, तो खुला वाकई हो जाएगा, वल अल्फु अलल अबी, और वो हजार बाप पर लाजिम होंगे, लिअन्न इश्तिरात बदलिल खुलई अलल अजनबी सहीहुन फअलल अबी औला। वजह यह कि बदले खुला की शर्त लगाना अजनबी पर यह जायज है, तो बाप पर बतरीके औला जायज है। एक अजनबी शख्स है, खावन क्या कहता है, ये फुला आदमी जो है अगर ये तुम्हारा बदले खुला हजार दिरहम कबूल करता है तो मैं तुम्हारे साथ खुला करता हूं। उस अजनबी ने कहा मैं कबूल करता हूं, तो उस पर एक हजार लाजिम हो गए और खुला हो गया। तो जब अजनबी जो है वो खुला का बदल अपने ऊपर लाजिम कर सकता है, तो अजनबी की तो शफकत नाकिस है, जब वो अपने ऊपर बदले खुला को लाजिम कर सकता है तो बाप की शफकत तो कामिल है, वो बतरीके औला बेटी के बदले खुला के अपने ऊपर लाजिम कर सकता है। तो कहते हैं लिअन्न इश्तिरात बदल खुलए अलल अजनबी ये सहीह, इसलिए क्योंकि बदल खुला की शर्त लगाना अजनबी पर ये सहीह है, फअलल अबी औला, तो बाप पर ये बतरीके औला सही होगा, वला यस्कुतु महरुहा, हां उस बेटी का महर नहीं साकित होगा, खुला तो ठीक हो गया, खुला का इवज तो बाप ने देना है, लेकिन बेटी का महर खावंद पर से साकित नहीं, हालांकि खुला के अंदर तमाम हुकूक साकित हो जाते हैं, लेकिन यहां बेटी का हक जो है यानी उसका महर वो खावन पर से साकित नहीं, इसलिए क्योंकि बाप को ये विलायत नहीं कि वो उस महर को साकित करे, बाप उसके महर को साकेत नहीं कर सकता। वजह यह कि इसमें सगीरा का नुकसान है भाई, इस महर को माफ करने में सगीरा पर कोई शफकत नहीं है। हां, अगर बाप महर का भी जामिन बनता है कि जो तुम्हारे ऊपर जितना महर बनता है वो मैं अदा कर दूंगा अपनी बेटी को, तो फिर खावन से महर साकित हो जाएगा, अब बाप को अदा करना पड़ेगा।
जी।
बाप खावंद पर से नाबालिगा बेटी का महर साकित नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें शफकत नहीं है। जब शफकत नहीं है तो बाप को इस महर को माफ करने की विलायत भी हासिल नहीं है भाई। तो कहते हैं वला यस्कुतु महरुहा, और उस नाबालिगा का महर साकित नहीं होगा खावंद से, लिअन्नहु लम यदखुल तहता विलायतिल अबी, इसलिए क्योंकि ये बाप की विलायत के तहत दाखिल नहीं, बाप को ये इख्तियार नहीं है क्योंकि इसमें कोई शफकत नहीं है। व इन शरत अल अल्फ अलैहा तवक्कफ अला कबूलिहा इन कानत मिन अहलिल कबूली। सूरत मसला ये, खावंद बाप के साथ खुला करता है उसकी नाबालिगा बेटी के बारे में, लेकिन खावंद शर्त यह लगाता है कि आपकी बेटी कबूल करे। अगर आपकी बेटी कबूल करती है खुला 1000 की शर्त पर, तो खावंद ने बेटी की कबूलियत की शर्त लगा दी, और बेटी समझदार है तो नाबालिगा लेकिन समझदार है, उसको निकाह का और खुला का इलम है, उसको पता है खुला के अंदर कुछ माल देकर जान छुड़ाई जाती है खावन से, तो बेटी फिर कबूल कर लेती है। खावन ने खुला की कबूलियत की शर्त किस पर लगा दी? बेटी पर। तो याद रखो, बेटी जब कबूल कर लेगी तो खुला हो गया, तलाक हो गई। लेकिन बेटी पर माल नहीं लाजिम होगा भाई, हम पहले बता चुके हैं माल लाजिम नहीं, और नीज खावंद पर से महर भी साकित नहीं होगा भाई। तो कहते हैं वह इंशारत अल अल्फा अलैहा, और अगर खावंद ने 1000 की शर्त लगा दी अलैहा उस सगीरा पर, तवक्कफा अला कबूलिहा, तो यह खुला मौकूफ रहेगा उस सगीरा के कबूल करने पर, इन कानत मिन अहलिल कबूली, अगर वो अहले कबूल में से है यानी कबूल की सलाहियत रखती है, वो इस खुला वगैरह को समझती है, तो ये माना है इनकानत मिन अहलिल कबूली, अगर वो नाबालिगा जो है अहले कबूल में से है यानी इस खुला वगैरह को वो समझती है, इतनी अकल वो रखती है, तो फिर उसके कबूल से तलाक वाक़े हो जाएगी। तो कहते हैं फ़इन क़बिलत वक़ाअत तलाक, अगर उसने कबूल कर लिया तो तलाक वाक़े हो जाएगी, लिवजूद शर्ती शर्त पाए जाने की वजह से, खावन ने भी खुला को मुअल्लक किया था किस पर? बेटी के कबूल पर, तो शर्त पाई गई तो मशरूत भी पाया गया तो तलाक वाके हो जाएगी। लेकिन वला यजिबुल मालू, माल वाजिब नहीं होगा, लिअन्नहा लैसत मिन अहलिल गरामती, गरामत कहते हैं तावान को, तावान और जुर्माना, लिअन्नहा लैसत मिन अहलिल गरामती, इसलिए क्योंकि ये अहले तावान में से नहीं है, इस पर जुर्माना लाजिम नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुज़ाक खुरूज के वक्त गैर मुतकव्विम है, और इस पर जो बदल खुला आएगा वो गोया जुर्माने के तौर पर आ रहा है, बदले में दूसरी तरफ से कोई माल हासिल नहीं हो रहा, दूसरी तरफ से तो बुज़ा मिल्कियत से निकल रहा है, और मिल्कियत से निकलते वक्त तो बुज़ा मुतकव्विम नहीं, और बेटी को जो माल देना पड़ेगा वो तो मुतकव्विम, और उधर से जो चीज आ रही है वो गैर मुतकव्विम, तो ये गोया जुर्माना ही हो गया ना एक तरह का, लेकिन ये सगीरा पर जुर्माना वाजिब नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं लि अन्नहा लैसत मिन अहलिल गरामती, इसलिए क्योंकि सगीरा जो है वो अहले तावान में से नहीं है। आगे देखिए, फइन क़बिलहुल अब अनहा, और अगर बाप कबूल कर लेता है अनहा उस सगीरा की तरफ से, फफीहि रिवायतानी, तो उसमें दो रिवायतें हैं भाई, खावंद ने उस सगीरा के कबूल करने की शर्त लगाई थी, लेकिन सगीरा के बजाय अगर बाप कबूल करता है तो इसमें कहते हैं दो रिवायतें हैं, वही दो रिवायतें जो मैंने ऊपर बयान कर दी। एक रिवायत ये कि बाप कबूल कर सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है, सगीरा का नुकसान नहीं है भाई, नुकसान नहीं है। वजह यह कि सगीरा पर माल ने तो आना नहीं, हां तलाक हो जानी है, तवज्जो है, तो जैसे सगीरा को कोई हदिया दे, कोई तोहफा दे, तो बाप उसको कबूल कर सकता है क्योंकि उसमें सगीरा का फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं। तो यहां पर भी खावन से सगीरा की जान छूट रही है और उस पर माल भी वाजिब नहीं हो रहा, तो बाप भी कबूल कर सकता है क्योंकि सगीरा अहले गरामत नहीं, उस पर माल तो आ नहीं सकता, तो सिर्फ नफा है, उसकी जान छूट रही है, तो वो बाप भी कबूल कर सकता है। और जबकि दूसरी रिवायत यह है कि बाप कबूल करे तो फिर तलाक वाकई नहीं होगी, वजह यह कि शर्त के अंदर नयाबत जारी नहीं होती, जिसकी शर्त लगाई है उसी का कबूल करना जरूरी है, कोई उसका नाइब बनकर कबूल नहीं कर सकता। तो कहते हैं फइन कबिलहुल अबु अनहा, और अगर बाप कबूल कर ले सगीरा की तरफ से, फफीही रिवायतानी, तो इसमें दो रिवायतें हैं, वकदा इन खलअहा अला महरिहा वलम यज़मनिल अबुल महरा तवक्कफ अला कबूलिहा फइन कबिलत तुल्लिकत वला यस्कुतुल महरु। सूरत मसला यह, खावंद ने सगीरा से खुला किया है महर के बदले कि मैं तुम्हारी जान छोड़ता हूं, तुम अपना महर साकित कर दो मुझ पर से, तो ये खुला कर लिया, तो इसके अंदर बाप को तो विलायत नहीं है, वो तो सगीरा के महर को खावंद से साकित नहीं कर सकता। अब इसमें दो सूरतें हैं, या तो बाप इस महर का जामीन बनेगा या जामीन नहीं बनेगा। अगर बाप जामीन नहीं बना तो फिर खुला तो हो जाएगा, तलाक तो हो जाएगी, और सगीरा पर माल भी वाजिब नहीं, और खावन पर से महर साकित नहीं, तलाक हो गई लेकिन महर उसको अभी भी अदा करना पड़ेगा। और कबला दुखूल कितना महर देना पड़ता है? निस्फ महर। सोहबत से पहले अगर तलाक हो जाए तो कितना महर देना पड़ता है? निस्फ महर। तो वो खावन के जिम्मे अभी भी बाकी है। और अगर बाप जामीन बन गया खावन की तरफ से बेटी के लिए कि मैं महर अदा कर दूंगा, तो अब खावन पर से वो महर साकित हुआ और किसके जिम्मे आ गया? बाप के जिम्मे आ गया। अब वो उसको अदा करना पड़ेगा, और कितना अदा करना पड़ेगा आपको बतलाएंगे, निस्फ महर। क्योंकि सोहबत से पहले तलाक वाकई हो तो कितना महर आता है खावंद पर? निस्फ महर। और वही उसी का जमान दिया है बाप ने, तो बाप को भी निस्फ महर ही देना पड़ेगा। मसला समझ में आ गया? तो कहते हैं वकदा इन खलअहा अला महरिहा, और इसी तरह अगर खावंद ने खुला कर लिया उस सगीरा से अला महरिहा उसके महर की शर्त पर, वलम यज़मनिल अबुल महरा, और हाल यह है कि बाप जो है वो महर का जामिन नहीं है, तवक्कफा अला कबूलिहा, तो इस सूरत में यह खुला उस सगीरा के कबूल पर मौकूफ रहेगा। फइन कबिलत, अगर उसने कबूल कर लिया, तुल्लिकत, तो तलाक हो जाएगी, वला यस्कुतुल महरू, लेकिन महर साकित नहीं होगा, वो खावन को देना पड़ेगा। व इन कबिल अल अब अनहा, और अगर बाप ने उसकी तरफ से कबूल कर लिया, इसी मसले में खावन ने किस शर्त पर खुला किया है? महर की शर्त पर। तो कहते हैं वह इन कबिल अल अब अनहा, और अगर बाप ने सगीरा की तरफ से कबूल कर लिया, फालर रिवायतें, तो यह भी दो रिवायतों पर है। एक रिवायत क्या कि तलाक नहीं होगी क्योंकि शर्तों में नयाबत जारी नहीं होती, और दूसरी रिवायत के मुताबिक तलाक वाकई हो जाएगी, बाप कबूल कर सकता है, इसलिए क्योंकि इसमें सगीरा का नफा ही नफा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है भाई, तो बाप कबूल कर सकता है। तो कहते हैं वह इन कबिल अल अब अनहा फालर रिवायतैनी, अगर बाप ने उस सगीरा की तरफ से कबूल कर लिया, फालर रिवायतैनी, तो यह भी उन दो रिवायतों पर है। वह इन जमीन अल अबुल महरा, और अगर बाप महर का जामिन हो गया, बाप ने खावन से खुला किया और सगीरा के महर का जामिन हो गया, वह हुआ अल्फ दिरहमिन, इस हाल में कि महर कितना था? 1000 दिरहम था, तो तुल्लिकत, तो इस सूरत में तलाक हो जाएगी, ली वजूद कबूली ही, इसलिए क्योंकि बाप का कबूल करना पाया गया, बाप ने खावन से खुला किया है ना, तो बाप के कबूल की उसने शर्त लगाई है, तो बाप ने कबूल कर लिया, तो खुला हो गया, तो तुल्लिकत, उस सगीरा को तलाक हो जाएगी, ली वजूद कबूली ही, बाप की कबूलियत के पाए जाने की वजह से, वह हुआ शर्तु, और वही तो शर्त थी, वही तो शर्त थी। तो आपके जहन में इश्काल आएगा कि यहां पर साहिब हिदाया फरमा रहे ली वजूद कबूली ही वह हुआ शर्तु, के बाप का कबूल पाया गया और यही शर्त थी, पीछे आपने हमें बताया था कि सगीरा का खुला किया जा रहा है तो सगीरा का कबूल करना शर्त है। इसीलिए बाज़ फुकहा क्या फरमाते हैं कि बाप नायब होकर कबूल करेगा तो शर्त में तो नयाबत जारी नहीं होती, लिहाजा तलाक ही वाकई नहीं होगी। और यहां पर साहिब हिदाया फरमाने ली वजूदी कबूल ही, क्योंकि बाप का कबूल करना पाया गया, वह हुआ शर्त और वही तो शर्त था, तो लिहाजा तलाक हो जाएगी। तो जवाब याद रखना भाई, यहां पर बाप महर का जामिन बन रहा है, जब महर बाप के जिम्मे आएगा तो बाप का कबूल करना जरूरी है, यहां पर सगीरा का कबूल करना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई। तो यहां चूंकि बाप के ऊपर माल आ रहा है और जिस पर माल आता है उसका कबूल करना जरूरी होता है, तो बाप ने कबूल कर लिया तो शर्त पाई गई, तो तलाक वाकई हो गई। ली वजूद कबूल ही, इसलिए क्योंकि बाप का कबूल करना पाया गया, वह हुआ शर्त और वही तो शर्त थी। वह यलजमुहु खमसुमी अतिस्तिहसानन वफिल कियासी यलजमुहुल अल्फ। अच्छा, बाप जामीन हो गया है महर का और महर तो मुकर्रर किया था 1000 दिरहम, तो अब बाप को कितना देना पड़ेगा? बाप पूरे महर का जामीन हुआ है सगीरा के लिए और पूरा महर तो 1000 दिरहम है, तो आपको बतलाएंगे कि यहां एक कियास है और एक इस्तेहसान है। कियास तो यह तकाजा करता है जितना महर मुकरर किया गया था वो सारा अब बाप के जिम्मे है जी। बाप महर का जामिन हुआ है ना, और महर कितना था? 1000 दिरहम, तो वो 1000 दिरहम अब बाप को अदा करने पड़ेंगे सगीरा को। लेकिन इस्तेहसानन बाप पर सिर्फ 500 दिरहम आएंगे। कितने आएंगे? 500 दिरहम आएंगे, इसलिए क्योंकि यह तलाक सोहबत से पहले वाकई हो रही है और सोहबत से पहले जो तलाक है उसमें कितना आता है? निस्फ महर आता है। तो खावन के जिम्मे 500 दिरहम आ रहे थे और बाप ने उसी को अपने जिम्मे ले लिया, तो अब वो 500 दिरहम किसको अदा करने पड़ेंगे? बाप को अदा करने पड़ेंगे। तो यह इस्तेहसानन है। कियास क्या तकाजा करता है? कि जितना महर मुकरर किया था यानी 1000 दिरहम वो सारा देना पड़ेगा, लेकिन इस्तेहसानन 500 दिरहम आएंगे यहां पर। तो कहते हैं वयल जमुहु खमसुमी अति इस्तेहसानन, और बाप पर 500 दिरहम लाजिम होंगे इस्तेहसानन, ये बतौर इस्तेहसान के हैं। वफिल कियास यल जमुहुल अल्फ, और कियास के अंदर बाप पर 1000 दिरहम लाजिम होंगे। व असलुहु फिल कबीरती, और असल इसकी जो है कबीरा के अंदर है। ये जो मसला जिक्र किया गया इसकी असल कबीरा बालिगा औरत के अंदर है। इज़ख्तलात कबला, भाई देखो एक कबीरा है वो खावंद से खुला करती है महर पर और सोहबत से पहले, सोहबत से पहले औरत जो है वो खावंद से खुला करती है महर पर भाई, और महर इसका मसलन 1000 दिरहम था। तो कियास तो यह तकाजा करता है कि यह सोहबत से पहले खुला कर रही है और सोहबत से पहले खावन पर कितना आता है? निस्फ महर, तो 500 दिरहम, और औरत के जिम्मे कितना आ चुका है? 1000 आ चुका है, क्योंकि महर मुकरर कितना किया था? 1000 मुकरर किया था। तो कियास यह तकाजा करता है कि महर पर औरत ने खुला किया है तो औरत पर 1000 आया और खावन के जिम्मे 500 दिरहम थे, वो उस निस्फ महर जो अदा करना है। तो 500 तो 500 से कट गए, 500 तो 500 के मुकाबले में आ गए, वो तो साकित हो गए औरत पर से। खावन ने कितने देने हैं? 500, औरत ने कितना देना है? 1000, तो 500 तो 500 के मुकाबले में साकित हो जाएंगे और बाकी 500 औरत के जिम्मे रह जाएगा, वो जायद बीवी को अदा करने पड़ेंगे क्योंकि उसने खुला किस पर किया है? अपने महर पर। तो कियास यह तकाजा करता है कि कबीरा सोहबत से पहले जब खावन से खुला करे अपने महर के इवज, तो औरत को 500 दिरहम देने पड़ेंगे, जब 1000 दिरहम महर रखा हो भाई। लेकिन इस्तेहसानन औरत को कुछ भी अदा नहीं करना पड़ेगा। कहते हैं इसलिए क्योंकि खावन जब महर पर खुला करता है तो दरअसल उसका इरादा यह होता है कि मेरे जिम्मे कुछ नहीं आना चाहिए। तो कहते हैं वह असलहू फिल कबीरती, और असल इसकी कबीरा के अंदर है यानी बालिगा औरत के अंदर है। इज़ख्तलअत क़ब्ल दुखूल अला अल्फिन, जब वो खुला कर ले सोहबत से पहले 1000 की शर्त पर। वह महरुहा अल्फुन, और हाल यह है कि इसका महर भी 1000 है। फफिल कियासी अलैहा खमसुमी अतिन जाइदतिन, तो कियास के अंदर उस औरत पर 500 जायद होंगे। औरत ने कितने पर खुला किया है? महर पर, और महर कितना था? हजार। तो औरत पर हजार आया और खावन पर कितना है? 500। निस्वे महर है तो हजार में से 500 साकित हो गए और बाकी 500 रह गए, वो देने पड़ेंगे। ये कियास ये तकाजा करता है। वह फिल इस्तेहसान इला शैअ अलैहा, और इस्तेहसान के अंदर बीवी पर कुछ भी नहीं है। लिअन्नहु युरादु बिही आदतन, इसलिए क्योंकि इसके जरिए इरादा किया जाता है आदतन आम तौर पर। हासिल मा यलज़मु लहा, हासिल उसका जो खावन पर लाजिम आता है। भाई देखिए, दरअसल खावन जब महर पर खुला करता है तो उसका यह मकसद नहीं होता कि वह जायद औरत से वसूल करना चाहता है, बल्कि उसका मकसद यह होता है कि मेरे ऊपर जितना भी औरत का महर आ रहा है वह साकित होना चाहिए, मेरे जिम्मे कुछ नहीं आना चाहिए। और जब इस वक्त तो खुला जो हो रहा है वह सोहबत से पहले है भाई, और जब सोहबत से पहले है तो खावन पर कितना लाजिम है? निस्फ महर। तो हजार का निसफ कितना है? 500। तो गोया खावन पर इस वक्त 500 दिरहम महर आ रहा है और खावन इससे अपनी जान छुड़ाना चाहता है। तो लिहाजा मालूम हो, जो औरत ने खुला किया है महर के अवज, वो इस महर के अवज खुला है, जो निकाह में मुकर्रर किया था उस महर के अवज खुला नहीं है, बल्कि ये जो खावन के जिम्मे आ रहा है खावन इसे जान छुड़ाना चाहता है। तो लिहाजा गोया औरत ने भी 500 पर ही खुला किया है। तो ये 500 जो है वो जो खावन के जिम्मे निस्फ महर 500 है, वो ये दोनों एक दूसरे के अवज कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। औरत के जिम्मे भी कितना आ गया? 500, और खावन के जिम्मे भी कितना था? 500। तो 500 500 से कट गया, अब देखो खावन के जिम्मे कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा कियास तो यह तकाजा करता है कि इस सूरत में औरत पर पूरा महर आना चाहिए और उसमें से निस्वे महर तो खावन के जिम्मे है, वो कट जाएगा और 500 औरत को देने पड़ेंगे। लेकिन इस्तेहसानन यहां किसी पर कुछ भी नहीं आएगा, ना खावन के जिम्मे कुछ है और ना बीवी के जिम्मे कुछ है, क्योंकि यह खुला उतने ही माल में समझा जाएगा जो इस वक्त खावन के जिम्मे आ रहा है, और वह तो निस्वे महर है भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु युरादु बिही आदतन, इसलिए क्योंकि इस तरह के खुला के जरिए आदतन ये मुराद होता है। हासिलु मा यल्ज़मु लहा, वो जो औरत के लिए खावन पर लाजिम होगा उसका हासिल, उसका हासिल जो है उस पर खुला किया जा रहा है। आगे देखिए बाबु ज़िहार, याद रखो ज़िहार अरबी जुबान में ज़िहार इसे कहते हैं कि खावंद अपनी बीवी से कहे अंति अलैया का ज़हरी उम्मी, अंति अलैया का ज़हरी उम्मी, इसको कहते हैं ज़िहार अरबी जुबान में, कि तुम मुझ पर इसी तरह है जैसे मेरी मां की पुश्त भाई। यह है अरबी जुबान के एतबार से ज़िहार का माना। और याद रखो जमाने जाहिलियत के अंदर इसको तलाक शुमार किया जाता था, और ऐसी तलाक जिसकी वजह से हुर्मत मुअब्बदा आ जाती थी। तलाक हो गई या औरत खावन से जुदा हो गई और ऐसी हुर्मत आई है, अब हमेशा के लिए यह औरत इस खावन पर हराम है, अब ये दोबारा इसे जिंदगी भर निकाह नहीं कर सकता भाई। तो जमाने जाहिलियत के अंदर इस ज़िहार को ऐसी तलाक शुमार किया जाता था जिसकी वजह से हुर्मत मुअब्बदा आती थी, हमेशा की हुर्मत आ जाती थी। जबकि साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे कि ज़िहार जो है इस्तेलाह शरीयत के अंदर वो ये है कि अपनी बीवी को तशबीह दी जाए ऐसी मुहर्रमा औरत के साथ जो अलत ताबीद हराम हो खावंद पर, जो हमेशा के लिए हराम है उसके साथ तशबीह दी जाए। मसलन मां है, बहन है, बेटी है, फूफी है, खाला है, ये सब क्या हैं? ये महरम हैं, ये सब औरतें महरम हैं, इनके साथ निकाह की कोई सूरत नहीं। तो ये हराम है इंसान पर अलत ताबीद हमेशा के लिए। तो बीवी को उन औरतों से तशबीह देना जो हमेशा के लिए इंसान पर हराम है, इसको ज़िहार कहते हैं। इस तशबीह को ज़िहार कहते हैं इस्तिलाह शरीयत में। तो अरबी जुबान में ज़िहार किसे कहते हैं? खावंद का बीवी से कहना अंति अलैया का ज़हरी उम्मी, इसको ज़िहार कहते हैं। और इस्तिलाह शरीयत में अपनी हलाल बीवी को उन औरतों के साथ तशबीह देना जो हमेशा हमेशा के लिए खावंद पर हराम हो, इसको ज़िहार कहते हैं भाई। तो ज़माना जाहिलियत के अंदर यह ज़िहार तलाक भी था और हुर्मत मुअब्बदा भी थी, लेकिन शरीयत ने इसको बदल दिया इसके हुक्म को कि ये तलाक नहीं है, ये निकाह को खत्म नहीं करेगी। अलबत्ता हुर्मत आएगी, क्या आएगी? हुर्मत, लेकिन ये हुर्मत मुअब्बद नहीं होगी बल्कि मुअक्कत होगी कुछ वक्त के लिए, और वो कब तक? कहते हैं जब कफारा दे देगा। कफारा दे देगा तो फिर हुर्मत खत्म हो जाएगी, जब तक कफारा नहीं देगा तो हुर्मत भी खत्म नहीं होगी भाई। और यहां एक कीमती बात याद रखना कि जिहार की वजह से जो हुर्मत आती है वो जौजे सानी भी खत्म नहीं कर सकता। ये खावंद अगर इस बीवी को तलाक दे दे और इसने जिहार किया हुआ है और इस बीवी ने किसी और से निकाह कर लिया और फिर बाद में उसने तलाक दिया, उसका इंतकाल हुआ, अब बीवी इसके पास आ गई, तो भी ये बीवी अब इसके लिए हलाल नहीं, क्योंकि इसके साथ इसने जिहार किया हुआ है, लिहाजा कफारा देना पड़ेगा, फिर ये बीवी हलाल होगी। बात समझ में आ गई? देखो, जिहार की हुर्मत जो है उसको जौजे सानी भी खत्म नहीं कर सकता। देखिए साहिब हिदाया इसको और बेहतरीन अल्फाज में बयान फरमाएंगे, तो कहते हैं बाबु जिहार व इदा काल अर्रजुलु लिम्रअतिही, और जब किसी शख्स ने अपनी बीवी से कहा अंति अलैया का ज़हरी उम्मी, के तू मुझ पर इसी तरह है जैसे मेरी मां की पुष्ट, यानी जैसे मेरी मां मुझ पर हराम है तू भी मुझ पर इसी तरह हराम है, फकद हरुमत अलैहि, तो तहकीक ये बीवी उस शख्स पर हराम हो गई, ला यहिल्लु लहू वतुहा वला मस्सुहा वला तकबीलुहा, और जायज नहीं है इस शख्स के लिए इस बीवी से सोहबत, इसके साथ सोहबत भी जायज नहीं, वला मस्सुहा और इसको छूना भी जायज नहीं, वला तकबीलुहा और इसका बोसा लेना भी जायज नहीं। तो देखो, वती भी हराम हो गई, सोहबत भी हराम हो गई, और दवाई वती जो है वो भी हराम हो गए भाई। तो कहते हैं ला यहिल्लु लहू वतुहा वला मस्सुहा वला तकबीलुहा, के इस खावन के लिए अब इस बीवी की सोहबत भी जायज नहीं, और ना इसको छूना जायज है और ना इसका बोसा लेना, हत्ता युकफ्फिर अन ज़िहारिही, यहां तक कि ये अपने जिहार से कफारा दे दे। लिकौलिही ताला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से अल्लाह को फरमाते हैं वल्लदीन युज़ाहिरून मिन निसाइहिम, और वो लोग जो जिहार कर लेते हैं अपनी बीवियों से, जी इला अन काला, यहां तक कि आगे अल्लाह फरमाते हैं फतहरीरु रकबतिन मिन कब्लि अन यतमास्सा, तो एक गर्दन का यानी एक गुलाम या बांदी का आजाद करना है, मिन कबली अयता मासा, कबल इसके के बाहम एक दूसरे को छुएं, कबल इसके के एक दूसरे को हाथ लगाएं, उससे पहले एक गुलाम या बांदी को आजाद करना पड़ेगा। भाई देखिए, यहां तो आयत का कुछ हिस्सा जिक्र फरमाया साहिबे हिदाया ने, तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं भाई सूरह मुजादला के अंदर वल्लदीन युज़ाहिरून मिन निसाइहिम, और वो लोग जो जिहार कर लेते हैं अपनी बीवियों से, सुम्म यऊदून लिमा कालू, फिर वो रुजू करना चाहते हैं लिमा कालू, उस बात से जो उन्होंने कही है। उन्होंने तो क्या कहा था बीवी से कि तू मुझ पर इसी तरह हराम है जैसे मेरी मां, तो सुम्म यऊदून लिमा कालू, फिर वो रुजू करना चाहते हैं उस बात से जो उन्होंने कही है, फतहरीरु रकबतिन मिन कब्लि अन यतमास्सा, तो फिर एक गुलाम या बांदी का आजाद करना है कबल इसके के बाहम दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं, ذَلِكُمْ تُعَظُونَ بِهِ, इस बात की तुमको नसीहत की जाती है, वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और अल्लाह जो कुछ तुम अमल करते हो उससे बाखबर है, फमन लम यजिद, बस जो गुलाम या बांदी को ना पाए यानी जिसको गुलाम या बांदी मुयसर ना हो, फसियामु शहरैनि मुतताबिअइनि, तो उस पर दो माह के मुसलसल रोजे हैं, मिन कबली अयतमासा, बाहम एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले, फमन लम यस्तति, बस जो इसकी इस्तेतात न रखे यानी 60 रोजे भी नहीं रख सकता, बीमार है मरीज है, फमल्लम यस्ततिअ, जो इनकी इस्तेताअत नहीं रखता, फइतआमु सित्तीन मिस्कीना, तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा। ज़ालिका लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ये इसलिए ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। वतिल्का हुदूदुल्लाहि, और ये अल्लाह की बयान की हुई हदें हैं। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो देखो, इस आयत के अंदर जिहार का कफारा जिक्र किया गया है कि जो शख्स जिहार कर ले और फिर वो अब उसकी सोहबत को अपने लिए हलाल करना चाहता है तो गुलाम या बांदी को आजाद करना पड़ेगा सोहबत से पहले। और अगर गुलाम या बांदी मुयस्सर नहीं, जैसे आजकल के जमाने में गुलाम और बांदियों का वजूद ही नहीं, तो फिर 2 माह के मुसलसल रोजे, और ये भी सोहबत से पहले होने चाहिए। और अगर इसकी भी इस्तेताअत ना हो, कोई बीमार है या बहुत बूढ़ा है, तो फिर इस सूरत में 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाना पड़ेगा जी। 2 वक्त का खाना खिलाना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान को दिन में 2 मरतबा खाने की हाजत होती है, तो 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिला दे तो उसके बाद फिर बीवी हलाल हो जाएगी। देखिए भाई, अब किताब पर कहते हैं लिकौलिही तआला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, वल्लदीन युज़ाहिरून मिन निसाइहिम, और वो लोग जो जिहार कर लेते हैं अपनी बीवियों से, इला अन काला, यहां तक कि आगे अल्लाह ने फरमाया, फतहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, तो एक गुलाम या बांदी को आजाद करना है बाहम एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले। वज़िहार उकाना तलाकन फिल जाहिलियती, और जिहार जो है ये तलाक थी जमाने जाहिलियत में, तलाक भी थी और हुरमत मुअब्बदा भी थी। तो कहते हैं वज़िहार उकाना तलाकन फिल जाहिलियती, और जिहार जो है ये तलाक थी जमाने जाहिलियत में। फकर्रर शरउ असलहू, तो शरीयत ने इसकी असल को बरकरार रखा, यानी इसको तहरीम ही रखा, हां तलाक इसको करार नहीं दिया, और तहरीम मुअब्बद के बजाय इसको तहरीम मुअक्कत बना दिया कि तहरीम है कुछ वक्त के लिए है, और वो ये कि आप कफारा अदा कर दें तो ये तहरीम खत्म हो जाएगी। तो फकर्रर शरउ असलहू, तो शरीयत ने इसकी असल को बरकरार रखा, उसको साबित रखा। व नकल हुक्महू इला तहरीम मुअक्कतिन बिल कफारती, और शरीयत ने इस जिहार के हुक्म को मुंतकिल कर दिया इला तहरीमिन, ऐसी तहरीम की तरफ, मुअक्कतिन बिल कफारती, जो मुअक्कत है कफारे के साथ, जो मुकय्यद है यानी जिसका वक्त कफारे के साथ, जब कफारा अदा कर देगा तो वो तहरीम खत्म हो जाएगी। तर्जमा समझ में आ रहा है? तो कहते हैं व नकल हुक्महू इला तहरीम मुअक्कतिन बिल कफारती, और शरीयत ने इस जिहार का हुक्म नकल कर दिया, इसको मुंतकिल कर दिया इला तहरीमिन, ऐसी तहरीम की तरफ, मुअक्कतिन बिल कफारती, कि जो मुकय्यद है कफारे के साथ, यानी जिसका वक्त मुकय्यद है कफारे के साथ, जब कफारा दे देगा तो तहरीम खत्म हो जाएगी। और गैर मुज़ीलिन लिन्निकाह, और ये तहरीम जो है निकाह को ज़ाइल करने वाली नहीं है, यानी ये तलाक नहीं है, तहरीम आएगी लेकिन तलाक भी नहीं है, और नीज तहरीम मुअब्बद भी नहीं है बल्कि मुअक्कत है भाई, कफारे के जरिए ये तहरीम खत्म हो जाएगी। आगे देखिए वहादा ली अन्नहू जिनायतुन, और ये इसलिए क्योंकि ये जिनायत है, ये जो खावंद ने बात की है उसने जुर्म किया है, क्या किया है, वो जुर्म किया है। लिकौनी ही मुनकरम मिनल कौली वजूरा, मुनकर कहते हैं नापसंदीदा को, और जूर, जूर कहते हैं झूठ को। लिकौनी ही मुनकरम मिनल कौली, इसलिए क्योंकि ये नापसंदीदा बात है, वजूरन, और झूठ है। खावन ने जुर्म किया है, उसने इंतहाई नापसंदीदा बात कही है और झूठ कहा है, क्या झूठ है, कि तू मुझ पर इसी तरह हराम है जैसे मेरी मां मुझ पर हराम है, ये झूठ है ना, बीवी तो हराम नहीं है भाई, बात समझ में आ गई। तो ये उसने इंतहाई नापसंदीदा बात कही है और झूठ कहा है। फयुनासिबुल मुजाजातु अलैहा बिल हुर्मती, तो लिहाजा मुनासिब हुआ कि इसको बदला दिया जाए इस पर, बिल हुर्मती, हुर्मत के साथ, तो मुनासिब यह है कि इस जिनायत की वजह से अब खावंद को हुर्मत के साथ बदला दिया जाए कि अब बीवी हराम हो गई, वर्तिफाउहा बिल कफारती, और इस जिनायत का उठना या इस हुर्मत का उठना बिल कफारती किसके जरिए होगा? कफारे के जरिए होगा। सुम्मल वतु इदा हरुमा हरुमा बि दवाई ही, फिर मतन में बतलाया था वही कि वती भी हराम हो गई और दवाई वती भी हराम हो गए। अब उसकी क्या वजह है वो भी जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं सुम मलवत उ इदा हरुमा, के वती जब हराम हो गई, हरुमा भी दवाई ही, तो दवाई वती के साथ वो हराम हुई, वती हराम हुई दवाई वती के साथ, यानी वो चीजें जो वती की तरफ ले जाने वाली हैं, यानी शहवत से छूना या बोसा लेना वगैरह, वो भी हराम हो गए। कई लायक आफी ही, ताकि कहीं वो उस वती के अंदर वाकई न हो जाए, कहीं वो वती के अंदर वाकई न हो जाए। कहते हैं सुम मलवतु इदा हरुमा हरुमा भी दवाई ही, कहते हैं फिर जब वती हराम होगी तो वो दवाई वती के साथ हराम होगी, यानी बीवी को शहवत से हाथ लगाना या शहवत से बोसा लेना वगैरह ये भी जायज नहीं होगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो ये दवाई वती वती तक पहुंचा दें। बात समझ में आ गई। लिहाजा वती भी हराम और दवाई वती भी हराम। कहते हैं ये इसी तरह है जैसे एहराम, एहराम की हालत जब इंसान हज या उमरे के लिए जाता है तो उस वक्त जैसे वती हराम हो जाती है एहराम की हालत में, इसी तरह दवाई वती भी हराम हो जाते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो ये दवाई वती उसे कहां तक ना पहुंचा दें, वती तक ना पहुंचा दें भाई। तो कहते हैं सुम्मल वतु इदा हरुमा हरुमा भी दवाई ही, फिर वती जब हराम हो गई तो वो अपने दवाई के साथ हराम हो गई। कई लाया काफी ही, ताकि कहीं वो शख्स इस वती में वाकई ही ना हो जाए, दवाई वती की वजह से वती में वाकई ही ना हो जाए। कमाफिल एहरामी, जैसे कि एहराम के अंदर है वहां भी वती हराम है, तो साथ दवाई वती भी हराम है, कहीं वो वती में वाकई ही ना हो जाए। बेखिलाफिल हाइज़ वस्साइमी, बखिलाफ हैज वाली के और रोजादार के, हैज और रोजे में याद रखो दवाई वती मना नहीं, हैज और रोजे की हालत में दवाई वती मना नहीं। वजह यह कि इनका वुकूअ कसीर होता है, रोजे रखने तो पूरा देखो रमजान का महीना रोजे रखने पड़ेंगे, अगर खावंद और बीवी पर दवाई वती की भी पाबंदी लगा दी जाए तो वो मुश्किल में और तंगी में पड़ जाएंगे, तो लिहाजा वहां दवाई वती की इजाजत है। या इसी तरह हैज की हालत, हैज भी हर महीने आता है भाई, तो वहां हैज और रोजा चूंकि ये बकसरत होते हैं इसलिए इनके अंदर वती तो ममनू है, दवाई वती ममनू नहीं है भाई। तो कहते हैं बिखिलाफिल हाइज वस्साइमी, बखिलाफ हैज वाली के, वस्साइम और रोजादार के, लिअन्नहु यकसुरु वजूदुहुमा, इसलिए क्योंकि इन दोनों का वजूद बकसरत होता है, हैज भी हर महीने आता है और रोजे भी पूरा महीना रखने पड़ते हैं रमजान के, तो इनका वजूद कसरत से होता है। फलाव हरुमत दवाई युफजी इलल हरजी, तो अगर दवाई वती हराम हो गए तो ये हरज तक पहुंचाएगा, मियां बीवी तंगी और मुश्किल में पड़ जाएंगे। वला कदालिका जिहार वल एहराम, और जिहार और एहराम वो तो ऐसे नहीं हैं, यानी वो तो कसरत से वाकई नहीं होते। फइन वती अहा कबल अयु कफिर अस्तगफर अल्लाह तआला, फइन वती अहा कबल अयु कफिरा, अगर वती कर ली कफारा देने से पहले, खावन ने कफारा देने से पहले वती कर ली, इस्तगफर अल्लाह ताला, तो अल्लाह से इस्तगफार करे, अल्लाह से तौबा करे। वला शय अलैहि, और कोई चीज उस पर नहीं है, गैरुल कफारतिल उला, पहले कफारे के अलावा। बाज फुकाहा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स कफारे से पहले सोहबत कर लेगा तो फिर उस पर दो कफारे आ जाएंगे, एक कफारा तो जिहार की वजह से और एक कफारा आएगा कफारे से पहले सोहबत करने की वजह से, तो दो कफारे आ जाएंगे। लेकिन इंदल अहनाफ कफारा वही एक रहेगा, ये इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है कि कफारे से पहले सोहबत कर ली, तो ये तौबा इस्तगफार करे और दोबारा ऐसा न करे और कफारा अदा करे, उसके बाद फिर बीवी हलाल होगी। तो कहते हैं वला शैअ अलैहि गैरुल कफारतिल उला, और पहले कफारे के अलावा और कोई चीज नहीं है खावन पर। वला युआविदु हत्ता युकफिरा, आवदा युआविदु का माने दोबारा करना, वला युआविदु और दोबारा ऐसा न करे, हत्ता युकफिरा यहां तक कि कफारा दे दे। लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलामु लिल्लज़ी वाक़अ फी ज़िहारिही क़ब्लल कफारा, बवजह हुजूर अलैहिस्सलाम के जो आपने फरमाया, लिल्लदी उस शख्स से, वाक़अ फी ज़िहारिही, वाक़अ का माना है सोहबत करना, वो लिल्लदी उस शख्स से, वाक़अ फी ज़िहारिही जिसने जिमा कर लिया था अपने जिहार में, क़ब्ल अल कफ़ारती कफारा देने से पहले, तो वो शख्स जिसने कफारा देने से पहले अपनी बीवी से सोहबत कर ली थी, तो उसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया ये आगे जिक्र आ रहा है, इस्तग़फिरिल्लाह कि अल्लाह से मगफिरत मांगो, अल्लाह से तौबा करो, वला ताउद और दोबारा न करना, हत्ता तुकफ़िरा यहां तक कि कफारा दे दो। वलौ कान शैउन आखरु वाजिबन लबय्यनहु अलैहि सलातु वस्सलाम, अगर कोई और चीज वाजिब होती, लबय्यनहु अलैहि सलातु वस्सलाम, तो हुजूर अलैहि सलाम उसको बयान फरमाते, हुजूर ने और कोई चीज बयान नहीं फरमाई, सिर्फ इस्तिगफार का हुक्म दिया। قال आगे साहिब हिदाया फरमाते हैं, قال وهذا اللفظ لا يكون الا ظهارا, और ये जो लफ्ज हैं, ये जो मतन में आए थे, انت علي كظهر امي, ये जिहार ही है, ये जिहार ही है, इसमें तलाक वगैरह और चीज किसी चीज की नीयत सही नहीं, क्योंकि ये जिहार के अल्फाज हैं। तो कहते हैं قال صاحب هدايا فرماتے ہیں وهذا اللفظ لا يكون الا ظهارا, ये लफ्ज जो है नहीं है मगर जिहार ही, لانه صريح فيه, इसलिए क्योंकि ये लफ्ज जिहार के बारे में सरीह हैं, इनमें और कोई माना नहीं, तो इनसे जिहार ही होगा भाई। तो कहते हैं لانه صريح فيه, क्योंकि ये लफ्ज जिहार में सरीह है, इसमें और कोई माना नहीं, तो लिहाजा ये जिहार ही होगा इससे। वलौ नवा बिही तलाक ला यसिहु, और अगर इसके जरिए खावन ने तलाक की नीयत की तो सही नहीं, तलाक की नीयत करेगा वो भी सही नहीं, ईला की नीयत करेगा वो भी सही नहीं, क्योंकि ये लफ्ज जिहार के बारे में सरीह है भाई। वलौ नवा बिही तलाक ला यसिहु, और अगर इन लफ्जों के जरिए खावन ने तलाक की नीयत की तो ये सही नहीं, लिअन्नहु मनसूखुन फला यतमक्कनु मिनल इतियानी बिही, لأنه منسوخ, इसलिए क्योंकि इसका तलाक होना मनसूख हो चुका है, जमाने जाहिलियत में यह तलाक थी लेकिन शरीयत ने इसके तलाक होने को मनसूख कर दिया, और जब शरीयत ने एक चीज को मनसूख कर दिया है तो आदमी उस चीज को अब साबित नहीं कर सकता। तो कहते हैं لأنه منسوخ, क्योंकि इसका तलाक होना मनसूख है, فلا يتمكن من الاتيان به, तो यह शख्स कादिर नहीं है उसको लाने पर, यानी जिस चीज को शरीयत ने मनसूख कर दिया है ये उसको अब लाने पर कादिर नहीं, यानी तलाक को इसके जरिए साबित नहीं कर सकता भाई। वह इदा قال انت علي كبطن امي, जिहार का माना समझ में आ गया, उसका हुक्म भी आपको पता चल गया कि कफारा अदा कर देगा तो बीवी फिर हलाल हो जाएगी, अलबत्ता इसे निकाह नहीं टूटेगा, औरत हराम हो गई निकाह नहीं टूटा। अब मजीद अल्फाज भाई, और किस किस चीज के अंदर तशबीह देगा तो जिहार साबित होगा, और किन चीजों में तशबीह देगा तो जिहार साबित नहीं होगा, और नीज जिहार के मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज कि उनका क्या हुक्म होगा, वो साहिब हिदायत तफसील बयान फरमा रहे हैं। वह ईदा काला, और जब खावन ने कहा अंति अलैया का बतनी उम्मी, जहर यानी पुश्त के बजाय बतन यानी पेट को जिक्र किया कि खावन बीवी से कहता है अंति अलैया का बतनी उम्मी कि तू मुझ पर ऐसे ही है जैसे मेरी मां का पेट, औ का फखिजी हा, फखिज कहते हैं रान को भाई, रान ये घुटने से ऊपर का जो हिस्सा है, औ का फखिजी हा कि तू मेरे लिए इसी तरह है जैसे मेरी मां की रान, औ का फर्जीहा तू मेरे लिए इसी तरह है जैसे मेरी मां की शर्मगा, फहुआ मुजाहिरुन तो ये शख्स जिहार करने वाला है भाई, पुश्त के बजाय अगर पेट या राने या शर्मगाह को जिक्र करता है ये सब भी क्या है जिहार है भाई। तो कहते हैं फहुआ मुजाहिरुन, तो यह शख्स जिहार करने वाला है। लिअन्ना ज़िहार लैस इल्ला तशबीहल मुहल्लति बिल मुहर्रमति, इसलिए क्योंकि जिहार नहीं है मगर मुहल्लला को, यानी वो औरत जो हलाल है यानी बीवी, वो बीवी को तशबीह देना बिल मुहर्रमति हराम औरत के साथ। वहादल माना यतहक्ककु फी उज़्मिल्लाह यजूज़ुन नज़रु इलैही, और ये वाला माना यानी ये तशबीह वाला माना यतहक्ककु, ये पाया जाता है फी उज़्विन, ऐसे उज़्व में भी ला यजूज़ुन नज़रु इलैही कि जिसकी तरफ देखना जायज न हो। ये वो आज़ा जिक्र किए जिनकी तरफ देखना जायज नहीं, ये राने और पेट वगैरह इनकी तरफ देखना जायज नहीं, तो इन आज़ा के अंदर भी मुहल्लला को तशबीह देना मुहर्रमा के साथ पाया गया। भाई मुहल्लला के अंदर तो इन आज़ा की तरफ देखना जायज था लेकिन मुहर्रमात के अंदर तो इन आज़ा की तरफ देखना जायज नहीं, तो लिहाजा मुहल्लला की तशबीह लाजिम आई किसके साथ, मुहर्रमा के साथ। तो कहते हैं वहाद अल माना यतहक्ककु फी उज़्मिन ला यजूज़ुन नज़रु इलैही, और ये वाला माना यानी तशबीह वाला माना यानी हलाल को हराम के साथ तशबीह देने वाला माना इन आज़ा में भी पाया जा रहा है। तो कहते हैं वहाद अल माना, और ये वाला माना जो है यतहक्ककु फी उज़्मिन, ये पाया जाता है ऐसे उज़्व में ला यजूज़ुन नज़रु इलैही के जिसकी तरफ देखना जायज न हो। वकदा इदा शब्बहा बिमन ला यहिल्लु लहु नज़रु इलैहा अला ताबीद मिन महारिमिही मिस्लु उख्तिही औ अम्मतिही औ उम्मिही मिन अर्रज़ाअ। भाई सिर्फ मां के साथ तशबीह देना जरूरी नहीं बल्कि किसी भी महरम के साथ तशबीह दे दे जो हमेशा के लिए इंसान पर हराम हो, यानी बेटी है, बहन है, खाला है, फूफी है वगैरह, दादी है, नानी है, पोती है, नवासी है, ये सारी जो हैं जो महरम हैं जिनके साथ हुरमत मुअब्बदा है इनके साथ तशबीह देना। तो कहते हैं वकदा ईदा शब्बहा, और इसी तरह है जब जिहार करने वाले ने बीवी को तशबीह दी भी मन ला यहिल्लु लहुन नज़रु इलैहा कि जिसकी तरफ देखना जायज नहीं है। इसी तरह है, तवज्जो से यही इबारत समझ लो भाई, वकदा इदा शब्बहा, इसी तरह अगर जिहार करने वाले ने अपनी बीवी को तशबीह दी बीमन उस औरत के साथ ला यहिल्लु लहुन नज़रु इलैहा कि जिसकी तरफ देखना जायज नहीं है। भाई मां, बहन, बेटी, इन सब की तरफ तो देखना जायज है। याद रखो यहां मुजाफ महजूफ निकालना पड़ेगा, यहां क्या आया ला यहिल्लु लहुन नज़रु इलैहा ऐ इला आज़ाइहा, ला यहिल्लु नज़रु इला आज़ाइहा कि वो औरतें जिनके इन मज़कूरा आज़ा की तरफ देखना जायज नहीं। बात समझ में आ गई, वो औरतें। तो कहते हैं वकदा इज़ा शब्बहा, और इसी तरह है जब खावन ने तशबीह दी अपनी बीवी को बीमन उन औरतों के साथ ला यहिल्लु लहु नज़रु के हलाल नहीं है इस खावन के लिए देखना इलैहा ऐ इला आज़ाइहा उनके आज़ा की तरफ, यानी जो जिक्र पीछे हो गए थे अलत ताबीद मिन महारिमिही और जो महारिम में से हैं अलत ताबीद हमेशा के लिए, तो अल ताबीद मिन महारिमिही जो ताबीद के तरीके पर उसके महारिम में से हैं वो महरम औरतें जो हमेशा के लिए हराम हैं उनके उन आज़ा के साथ तशबीह देना। इसके जरिए मुतल्लका सलास को निकाल दिया, एक शख्स ने अपनी बीवी को तीन तलाकें दे दी ये भी इस पर हराम हो गई, ये औरत भी क्या हो गई, मुहर्रमा तो है लेकिन हमेशा के लिए हराम नहीं, अगर बीच में ज़ौजे सानी आएगा ये फिर पहले खावन के लिए हलाल हो जाएगी। तो इस मुतल्लका सलास के साथ तशबीह दे अपनी बीवी को तो फिर इससे जिहार साबित नहीं होगा। मिसलु उख्ती ही औ अम्मती ही जैसे कि उसकी बहन है, औ अम्मती ही या उसकी फूफी है, औ उम्मी ही मीनर रजाती या उसकी रिजाई माँ है, खावंद की रिजाई माँ है उसके साथ तशबीह देता है, और रिजाई माँ भी क्या होती है इंसान पर हमेशा के लिए हराम होती है। لأنهن في تحريم المؤبد كالأم, इसलिए क्योंकि ये भी तहरीम मुअब्बद के अंदर मां की तरह हैं, ये सब औरतें भाई, बहन है, फूफी है, रिजाई मां वगैरह. لأنهن في تحريم المؤبد كالأم, इसलिए क्योंकि ये औरतें भी तहरीम मुअब्बद के अंदर मां की तरह हैं. وكذلك اذا قال, और इसी तरह है हुक्म जब खावन ने ये कहा, رأسك علي كظهر أمي, रसु की बीवी के सर को तशबी दे रहा है, रसु की अलैया का जहरी उम्मी, औ फर्जू की, या फर्जू की अलैया का जहरी उम्मी, या वजहू की अलैया का जहरी उम्मी, या रकबतु की, के रकबा कहता है. तो देखो कुछ अल्फाज अरबी जुबान में ऐसे हैं जिनके जरिए पूरे इंसान को ताबीर किया जाता है. रस बोलकर पूरा इंसान मुराद लेते हैं, रसुल कौम, कौम के सरदार को कहते हैं. इसी तरह रस का लफ्ज है, और या फर्ज शर्मगाह बोलकर पूरी औरत मुराद ली जाती है, या वजहुन चेहरा बोलकर पूरा इंसान मुराद होता है, या इसी तरह रकबा बोलकर पूरा इंसान मुराद होता है. जैसे अभी जिक्र आया फतहरीर रकबतिन, तो रकबा बोलकर पूरा गुलाम या बांदी मुराद है. तो अगर बीवी के ऐसे उज्व को भी तशबीह दे दी तो इस सूरत के अंदर भी जिहार साबित हो जाएगा. तो कहते हैं वकदालिका इदा काला, और इसी तरह है हुक्म जब खावन ने कहा, रसु की अलैया का जहरी उम्मी, औ फर्जु की, यह तेरी शर्मगा इसी तरह है, औ वजहु की, यह तेरा चेहरा, औ रकबतु की, आप तुम्हारी गर्दन, औ निसफु की, औ सुलूसु की, यह तेरा निसफ या तेरा सुलूस, ये मेरे लिए इसी तरह है जैसे मेरी मां की पुश्त भई. तो ऐसे जुज को जिक्र किया जो पूरे बदन में फैला हुआ है. अब निसफ जो है ये पूरे बदन में फैला हुआ है, हर हर उज का निसफ भाई, या सुलुस कह दिया तो हर हर उज का सुलुस. तो ऐसा जुज जिक्र किया खावन ने जो पूरे बदन में फैला हुआ है, तो उससे भी जिहार साबित हो जाएगा. निसफ की अलैया का जहरी उम्मी, या सुलुसु की अलैया का जहरी उम्मी. कहते हैं لأنه يعبر بها عن جميع البدن, इसलिए क्योंकि इनके साथ ताबीर किया जाता है पूरे बदन को, यह रस या फर्ज या वजहुन या रकबा के जरिए पूरे बदन को ताबीर किया जाता है. ويثبت الحكم في الشائع, और फिर ये जो निसफ की और सुलुस की इसके अंदर तशबीह दे रहा है, तो कहते हैं भाई यहां जब कहा निसफ की अलैया का जहरी उम्मी, तेरा निसफ मेरे ऊपर ऐसे ही है जैसे मेरी मां की पुश्त, तो निसफ के अंदर हुरमत आ गई, और फिर यह हुरमत सिरायत कर जाएगी और पूरी औरत के अंदर ही हुरमत आ जाएगी, पूरी औरत ही खावन पर हराम. इसी तरह अगर सुलुस कहता है तो सुलुस खावन पर हराम हुआ, बीवी का तीसरा हिस्सा, लेकिन वो फिर सिरायत कर जाएगा, मुतअद्दी हो जाएगा और पूरी बीवी ही खावन पर हराम हो जाएगी. तो ये माना है वयस्बुतुल हुक्मु फी शाइई, और ये हुरमत वाला हुक्म साबित हो जाएगा फी शाइई उस जुज में जो फैला हुआ है. सुम्मा यतअद्दा, फिर ये हुक्म मुतअद्दी हो जाएगा यानी सारे बदन में आ जाएगा. कमा बयन्ना हु फी तलाकी, जैसे हमने तलाक में बयान किया था, तलाक में भी अगर खावन बीवी से कहता है निसफु की तालिकुन या सुलुसु की तालिकुन, तो वहां भी निसफ पे तलाक आती थी और फिर सिरायत करके बाकी बदन में भी तलाक आ जाती थी. आगे देखिए वलौ काल अंति अलैया मिस्लु उम्मी, अब खावन बीवी से कहता है अंति अलैया मिस्लु उम्मी, तू मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मेरी मां. पहले क्या था का जाहरी उम्मी, जैसे मेरी मां की पुश्त, अब सिर्फ क्या कहता है मिस्लु उम्मी, कि अंति अलैया मिस्लु उम्मी, कि तू मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मेरी मां. औ का उम्मी, मिसल के बजाय काफ का लफ्ज ले आता है, अंति अलैया का उम्मी, तू ऐसे ही है मेरे लिए जैसे मेरी मां. तो अब इसका क्या हुक्म होगा वो बयान करेंगे. कहते हैं वलौ काल अंति अलैया मिस्लु उम्मी औ का उम्मी, तो युरजाउ इला नियति ही, तो इस सूरत में खावंद की नीयत की तरफ रुजू किया जाएगा, उसे नीयत पूछी जाएगी कि वो किस एतबार से तशबीह दे रहा है बीवी को मां के साथ. तो कहते हैं युरजाउ इला नियति ही, रुजू किया जाएगा खावंद की नीयत की तरफ, लियन का शिफा हुक्म हो, ताकि इसका हुक्म जाहिर हो जाए, खुल जाए, इसका हुक्म नीयत से पता चल जाएगा कि इसका क्या इरादा था, फिर उसके मुताबिक हुक्म का भी पता चल जाएगा। तो कहते हैं उसके नीयत की तरफ रुजू किया जाएगा, लियन का शिफा हुक्म हो ताकि इसका हुक्म जाहिर हो जाए। फइन काला अरतुल करामता, अगर खावन कहता है मैंने तो इज्जत का इरादा किया था, मैंने तो इज्जत का इरादा किया था, मैं तो अपनी बीवी से यह कह रहा था कि जैसे मेरी मां मेरे लिए मुअज्जज है और इज्जत वाली है, तू भी मेरी घर वाली है, मेरे लिए इज्जत वाली है, तो फिर कहते हैं उसकी बात कबूल की जाएगी, इसकी वजह से हुरमत नहीं आएगी भाई। इसलिए क्योंकि इज्जत के तौर पर तशबीह को कसरत से इस्तेमाल किया जाता है, इज्जत के तौर पर तशबीह को बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। आप भी देखते हैं किसी शख्स के पास कोई आदमी जाता है मशवरा करने के लिए कि मैं आपके पास मशवरा करने आया हूं, आप मेरे वालिद के मिसल हैं, बात समझ में आ गई, तो तशबीह दी जाती है इज्जत के तौर पर। तो कहते हैं फइन काला अरतुल करामत फहुआ कमा काला, अगर खावन ने कहा कि मेरा इरादा तो इज्जत का था, फहुआ कमा काला, तो ये ऐसे ही होगा जैसे खावन ने कहा। लिअन्न तकरीम बि तशबीह, इसलिए क्योंकि तशबीह के जरिए इज्जत करना, फाशिन फिल कलाम, ये कलाम के अंदर राइज है, फशवन से है, फशवन का माना है जो खूब राइज हो, फैला हुआ है। तो कहते हैं लिअन्न तकरीम बि तशबीह, इसलिए क्योंकि तशबीह के जरिए इज्जत, ये फाशिन फिल कलाम, ये कलाम के अंदर राइज है कसरत के साथ। वइन काला अरत तो जिहार फहुआ जिहार, और अगर खावन कहता है कि मैंने तो जिहार का इरादा किया था तो यह जिहार है। लिअन्नहु तशबीहुन बि जमीइहा, भाई खावन ने क्या कहा था, अंति अलैया मिस्लो उम्मी, और पहले जिहार वाला जुमला अंति अलैया का जाहरी उम्मी, वहां मां की पुश्त के साथ तशबीह देता था बीवी को, और यहां पूरी मां के साथ तशबीह दे रहा है, अंति अलैया मिस्लो उम्मी। तो जब एक उज के साथ तशबीह के अंदर हुरमत आती थी तो पूरी मां के साथ तशबीह में भी हुरमत आ जाएगी। लेकिन चूंकि कहते हैं ये सरीह नहीं है, ये लफ्ज अंति अलैया मिस्लो उम्मी ये जिहार के अंदर सरीह नहीं, इसके अंदर देखो इज्जत वाला माना भी आ सकता है, तो लिहाजा इसलिए यहां नीयत पूछी जाएगी भाई। और वो जो लफ्ज था अंति अलैया का जाहरी उम्मी, वो तो जिहार के अंदर सरीह है, और सरीह के अंदर नियत पूछने की भी हाजत नहीं होती भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु तशबीहुन बि जमीइहा, इसलिए क्योंकि यहां बीवी को तशबीह देना है पूरी मां के साथ। वफीही तशबीहुम बिल उज्वी, और पूरे के साथ तशबीह के अंदर उज की भी तशबीह आ गई, उज की भी तशबी आ गई। लाकिन नहू लैसा भी सरीह, लेकिन ये लफ्ज जो है जिहार के अंदर सरीह नहीं है, इसमें इज्जत वाला माना भी है। फयफ तकीरु इलन नीयति, तो ये कौल मोहताज होगा नीयत का, इसमें नीयत को देखा जाएगा। वह इन काला अरतु तलाक फहुआ तलाकुन बा इन, और अगर खावन कहते हैं मैंने तो तलाक का इरादा किया था, अंति अलैया मिसलु उम्मी के जरिए। तो इन काल अरत तो तलाक, और अगर खावन ने कहा कि मैंने तलाक का इरादा किया था, फहुआ तलाक उन बाइन, तो ये तलाक बाइन है। लिअन्नहु तशबीहुम बिल उम्मी फिल हुरमति, तो इसलिए क्योंकि ये हराम होने के अंदर मां के साथ तशबीह है। फकअन्नहु काला, गोया के खावन ने यूं कहा है अंति अलैया हराम, अंति अलैया मिस्लु उम्मी, ये इसी तरह है, गोया खामन ने क्या कहा है, अंति अलैया हराम उन कहा है, और अंति अलैया हराम उन कहा जाए और तलाक की नीयत की जाए तो इससे तलाक बाइन होती है, तो यहां भी क्या होगी, तलाक बाइन। तो कहते हैं फकअन्नहु काला अंति अलैया हराम उन, तो गोया खामन ने यूं कहा है अंति अलैया हराम उन, व नवत तलाक, और उसने तलाक की नीयत की है। वइल्लम यकुन लहू नीयतुन फलैसा बिशयइन इंदा अबी हनीफा तव अबी यूसुफा रहिमहुमल्लाह, और अगर उसकी कोई नीयत नहीं थी, खावन कहता है मेरी तो कोई नीयत नहीं थी, बस मैंने ये बात कह दी बीवी को, तो कहते हैं वह इलम यकुन लहू नीयतुन फलई सभी शय इन, और अगर खावन की कोई नीयत नहीं थी तो यह कुछ भी नहीं है, यानी इससे कोई तलाक वगैरह या जिहार नहीं होगा। इंदा अभी हनी फतः व अभी यूसुफ रहमहुमल्ला शेखैन रहमहुमल्ला के नजदीक लिहतमाल हमल अल करामती, इसलिए क्योंकि इसको इज्जत पर भी महमूल करने का एहतमाल है। तो कहते हैं लिहतमाल हमल अल करामती, इसलिए क्योंकि इसको करामत पर महमूल करने का भी एहतमाल है। वकाल मोहम्मद रहमहुल्लाहु यकून जिहारन, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यह जिहार होगा। अगर खावंद कहता है मेरी कोई नीयत नहीं थी, बगैर नीयत के मैंने कहा अंति अलैया मिसलु उम्मी या का उम्मी, तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं यह जिहार होगा। तो इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं यकून जिहारन, यह जिहार होगा। लिअन्न तशबीह बिउज्व मिन्हा लम्मा काना जिहारन, इसलिए क्योंकि मां के एक उज्व के साथ तशबीह देना जब वो जिहार है। फतशबीह बिजमीइहा औला, तो पूरी मां के साथ तशबीह देना यह बतरीके औला जिहार होगा। व इन आना बिही तहरीम अला गैरु, अगर खावन से पूछा गया आपकी क्या नीयत थी, उसने क्या कहा अंति अलैया मिसलु उम्मी, तो खावन कहता है मेरी हराम करने की नीयत थी, मेरी नीयत हराम करने की थी। अब ईला उसमें भी बीवी हराम होती है, वो कसम खाकर अपने ऊपर बीवी को क्या करता है हराम, और जिहार के अंदर भी बीवी इंसान पर हराम हो जाती है। तो अब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उसने हराम करने की नीयत की है, हराम ईला में भी बीवी हो जाती है, हराम जिहार में भी हो जाती है, लेकिन ईला में अदना दर्जे की हुर्मत आती है और जिहार में आला दर्जे की हुर्मत आती है। और जब एक चीज के अंदर दो एहतमाल हो, एक अदना और एक आला, तो अदना तो यकीनी साबित है और आला का एहतमाल होता है, लिहाजा अदना साबित हो जाएगा। इसको हम ईला शुमार करेंगे, इसको हम क्या शुमार करेंगे, ईला शुमार करेंगे। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसको हम जिहार शुमार करेंगे, क्या शुमार करेंगे, जिहार शुमार करेंगे। मसलन खावन ने क्या कहा अंति अलैया मिसलु उम्मी, नीयत पूछी गई आपकी क्या नीयत है, गुज़श्ता मसला गुजरा, अगर खावन की कोई नीयत ना हो तो शेखैन के नजदीक कुछ नहीं, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक जिहार। और अगर खावन कहता है मेरी नीयत हराम करने की थी, मैं बीवी को अपने ऊपर हराम करना चाहता था, तो इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ईला से भी बीवी हराम होती है, जिहार से भी हराम होती है, और अदना दर्जा है ईला का और आला दर्जा है जिहार का, लिहाजा अदना पर इसको महमूल करेंगे। नीयत क्या किया खावन ने, हराम करने की, तवज्जो है, हराम करने की नीयत की है खावन ने, और खावन ने तायीन वगैरह नहीं की, तो फिर इस सूरत में हम इसको ईला पर महमूल करेंगे, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, यहां तशबीह है भाई, और तशबीह जिहार में होती है, लिहाजा इसको हम जिहार पर महमूल करेंगे। तो कहते हैं वह इन आना बिही तहरीम ला गैरू, और अगर खावन ने इसके जरिए बीवी को हराम करने का इरादा किया, ला गैरू इसके अलावा का नहीं, फाइंदा बी यूसुफ रहमल्ला हुआ ईला उन, तो इमाम अबू यूसुफ रहमल्ला के नजदीक ये ईला है, लियकून साबितु बिही अदनल हुरमतैनी, ताकि वो चीज जो इसके जरिए साबित हो वो दो हुरमतों में से अदना दर्जे वाली हो, दो हुरमतों में से अदना दर्जे वाली हुरमत साबित हो जाए। भाई देखिए ईला भी हराम और जिहार भी हराम, लेकिन जिहार जो है वो अपनी जात के एतबार से ही हराम है और ईला अपनी जात के एतबार से हराम नहीं। ईला के अंदर एक इंसान कसम खाता है कि मैं चार माह या इससे ज्यादा तक अपनी बीवी से सोहबत नहीं करूंगा, तो यहां खुद ये कसम खाने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से अल्लाह के नाम की बेहुर्मती लाजिम आ रही है। अब यह सोहबत करेगा तो अल्लाह के नाम की बेहुर्मती लाजिम आएगी भाई, इसलिए इसे शरीयत ने मना किया है। तो खुद बिजाती ही इला की जात में नहीं खराबी, बल्कि इसकी वजह से अल्लाह के नाम की बेहुर्मती होती है। तो मालूम हुआ इला में जो हुर्मत है वो लिआइनी ही नहीं है, लिजाती ही नहीं है, इला की जात हराम नहीं है, उसमें हुर्मत किस वजह से आई, अल्लाह के नाम की बेहुर्मती होगी, अल्लाह के नाम की, तो उसमें जो हुर्मत आई है वो गैर की वजह से आई है। मालूम हुआ ईला हराम लिआइनी ही नहीं बल्कि हराम लिगैरी ही है, गैर की वजह से हराम है, किसमें, अल्लाह के नाम की बेहुर्मती है। जबकि जिहार वो अपनी जात के एतबार से ही हराम है। जिहार किसे कहते हैं? खावन बीवी से कहता है, अंति अलैया का जाहरी उम्मीद, तू इसी तरह है जैसे मेरी मां की पुश्त। तो देखो इंतहाई नापसंदीदा कलाम और झूठ बोल रहा है। ये तो बीवी है, ये तो हलाल है, ये तो मां की तरह हराम नहीं। तो लिहाजा ये जिहार अपनी जात के एतबार से ही हराम है क्योंकि इसमें झूठ और नापसंदीदा बात है। तो ईला अपनी जात के एतबार से हराम नहीं बल्कि अल्लाह के नाम की बेहुरमती होती है इसलिए हराम है, और जिहार अपनी जात के एतबार से हराम है। और नीज ईला के अंदर सोहबत कर ली जाए, ईला खत्म हो जाता है
जी।
और जिहार के अंदर सोहबत करेगा तो जिहार नहीं खत्म होगा बल्कि जुर्म और बढ़ गया भाई, कि उसने गुनाह किया भाई, कफारे से पहले बीवी से सोहबत कर ली भाई। और नीज कफारा जिहार क्या है? कम अज कम 60 रोजे रखना पड़ेंगे। और कफारा ईला क्या है? कि 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाएगा या कपड़े पहनाएगा या 3 रोजे रखेगा। तो ईला में सिर्फ 3 रोजे आते हैं और जिहार में 60 रोजे मुसलसल आते हैं। नीज कफारा जिहार में 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा जबकि ईला के अंदर 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। तो हर एतबार से ईला क्या है? उसकी हुरमत अदना है। एक तो वह हराम ले आईनी ही नहीं बल्कि हराम ले गैरी ही है भाई, और जबकि जिहार वह हराम ले आईनी ही है। और ईला जो है वती से खत्म हो जाता है और जिहार बगैर कफारा दिए खत्म नहीं होता भाई। तो लिहाजा इसलिए ईला की हुरमत कम है तो हम उस पर महमूल कर लेंगे। ये कौन फरमाते हैं? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह। वाइंदा मोहम्मदिन रहमहुल्ला, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक जिहार, उनके अगर खावन ने तहरीम की नीयत की है तो यह जिहार होगा। लिअन्ना काफ तशबीह तख्तसु बिही, इसलिए क्योंकि काफ तशबीह जो है वह खास है जिहार के साथ, यानी तशबीह का लफ्ज इस्तेमाल किया है। आगे देखिए, वलौ काला अंति अलैया हरामुन का उम्मी, अब दूसरे अल्फाज खावन ने जिक्र किए। पहला क्या था? जिहार किससे होता है? अंति अलैया का जहरी उम्मी। फिर दूसरा जुमला जिक्र किया था, अंति अलैया मिसलो उम्मी या का उम्मी, और अब हराम का लफ्ज भी बढ़ा देता है, अंति अलैया हरामुन का उम्मी। तो कहते हैं इसके अंदर अगर वो जिहार की नियत करेगा तो जिहार हो जाएगा, और अगर तलाक की नियत करेगा तो तलाक भी ठीक है भाई। तो कहते हैं वलौ काला अंति अलैया हराम उनका उम्मी, और अगर खावन ने कहा तो मुझ पर इसी तरह हराम है जैसे मेरी मां, व नवा जिहारन औ तलाकन, और खावन ने जिहार या तलाक की नियत की, फहुआ अला मानवा, तो ये उसी पर होगा जो उसने नियत की है। अगर जिहार की नियत की तो जिहार हो गया, और अगर तलाक की नियत की तो तलाक बाइन हो गई। लिअन्नहु यहतमिलुल वजहैन, इसलिए क्योंकि ये कलाम दोनों सूरतों का एहतमाल रखता है। अज़िहारा जिहार का भी एहतमाल रखता है, लिमकानी तशबीही ऐ लिवुजूदी तशबीही। मैंने बतलाया था कि साहिब हिदाया ये मकान मस्तर है, इस बमाने वजूद के इसको आम इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं जिहार का भी एहतमाल रखता है, लि मकानी तशबीही अली वजूदी तशबीही, किसके अंदर तशबीह मौजूद है। व तलाका, और ये तलाक का भी एहतमाल रखता है, लि मकानी तहरीमी अली वजूदी तहरीमी, तहरीम का वजूद पाया जा रहा है। क्या कह रहा है खावन? अंति अलैया हरामुन, तो ये तहरीम भी पाई जा रही है, तो तलाक का भी एहतमाल आ गया भाई। तहरीम के साथ आगे का उम्मी भी तो कह रहा है खावन, तो आपको साहिब हिदायत बतलाएंगे कि ये तशबीह उसी हुरमत को पक्का कर रही है। अंति अलैया हरामुन, इसमें तलाक की नियत आ गई, और का उम्मी ये उसी में ताकीद आ गई, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह तलाक, और यह तलाक का भी इस्तेमाल रखता है, लिमकानी तहरीमी, तहरीम के पाए जाने की वजह से। वह तशबी हु ताकीद उन लहू, और तशबी इसी तहरीम की ताकीद होगी। वह इलम तक उन लहू नीयत उन फाला कौली अबी यूसुफ रहमहुल्लाहु ईला उन वाला कौली मोहम्मद इन रहमहुल्लाहु जिहार उन। अच्छा भाई, यही जुमला है खावन ने नीयत कोई नहीं की, अंति अलैया हराम उनका उम्मी, कोई नीयत नहीं की, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक ईला हो जाएगा और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक काफी तशबीह मौजूद है, लिहाजा जिहार होगा। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक ईला क्यों होगा? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब खावन ने कोई नीयत नहीं की और ये अल्फाज कहे हैं अंति अलैया हराम उनका उम्मी, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं हम इसको दो हुरमतों में से जो अदना है यानी ईला उस पर महमूल करेंगे। दो हुरमतें कौन सी हैं? एक ईला और एक जिहार। तो ईला कम दर्जे वाला है वो तो यकीनी है और आला दर्जे वाले का इसमें इहतमाल है लेकिन उसकी तो कोई नीयत नहीं है, लिहाजा अदना पर महमूल कर लेंगे, तो ये ईला होगा। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां काफे तशबीह मौजूद है और तशबीह तो जिहार के अंदर होती है, लिहाजा इसको जिहार पर महमूल करेंगे। तो कहते हैं वह इलम तकुन लहू नीयतुन, और अगर खावन की कोई नीयत नहीं थी, फाला कौली अबी यूसुफ रहमतुल्लाह ईला उन, तो इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह के कौल पर यह ईला है, वाला कौली मोहम्मदिन रहमतुल्लाह ताला जिहार उन, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल पर यह जिहार है, वल वजहानी बैयन्ना हुमा, और ये दोनों वजहें हमने बयान कर दी, पीछे जिक्र आया था। वह इन कालत अंति अलैया हरामुन का ज़ाहरी उम्मी व नवा बिही तलाकन औ ईला अन लम यकुन इल्ला ज़िहारन। अब और अल्फाज खावंद इस्तेमाल करता है, कहता है अंति अलैया हरामुन का ज़ाहरी उम्मी, अब जहर का लफ्ज़ भी ले आता है, अंति अलैया हरामुन का ज़ाहरी उम्मी, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये सरीह है जिहार के बारे में, लिहाजा इससे जिहार ही होगा। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि इसके अंदर चूंकि तहरीम का लफ्ज़ भी उसने बाकायदा जिक्र किया है, लिहाजा यहां उसकी नीयत पूछी जाएगी, अगर उसने जिहार की नीयत की है तो जिहार होगा, अगर उसने तलाक की नीयत की है तो तलाक बाइन होगी, और अगर उसने ईला की नीयत की है तो ईला होगा। तो कहते हैं वह इन काला, और अगर खावन ने कहा अंति अलैया हराम उनका ज़ाहरी उम्मी कि तू मुझ पर हराम है जैसे मेरी मां की पुश्त, व नवा बिही तलाकन औ ईला अन, और उसने तलाक या ईला की नीयत की, लम यकुन इल्ला जिहारन, तो ये नहीं होगा मगर जिहार ही, इंदा अबी हनीफा तरहमला इमाम साहब के नजदीक। इमाम साहब फरमाते हैं ये जिहार में सरीह है, कब ज़ाहरी उम्मी कह रहा है, लिहाजा जिहार ही होगा, उसकी नीयत को नहीं देखेंगे। व काला, और साहिबैन फरमाते हैं हुआ अला मा नवा, कि ये उसी पर होगा जो उसने नीयत की है, ये कौल उसी पर महमूल किया जाएगा जो उसने नीयत की है। लिअन्ना तहरीम यहतमिलु कुल ज़ालिक अला मा बैयन्ना, इसलिए क्योंकि तहरीम जो है इन सब का इहतमाल रखती है। खावन ने भी क्या कहा है अंति अलैया हराम उनका ज़ाहरी उम्मी, तो हराम होने को जिक्र किया, तो ईला में भी बीवी हराम होती है और तलाक बाइन से भी बीवी क्या होती है हराम, और जिहार से भी क्या होती है हराम, लिहाजा सब का इहतमाल है, तो जो नीयत करेगा वो होगा। तो कहते हैं लिअन्न तहरीम यहतमिलु कुल ज़ालिक अला मा बैयन्ना, इसलिए क्योंकि हराम करना वो इन सब का इहतमाल रखता है उस वजह से जो हमने बयान कर दिया। गैर अन्न इंद मुहम्मदिन रहमतुल्लाह ताला, हां एक बात है, अगर उसने तलाक की नीयत की तो फिर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते तलाक हो जाएगी, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं अगर खावन ने तलाक की नीयत की है तो तलाक भी होगी जिहार भी होगा, दोनों चीजें हो जाएंगी, क्योंकि यह लफ्ज़ सरीह है किसके बारे में, जिहार के बारे में, तो जिहार ने तो होना ही है, तलाक भी साथ हो जाएगी। बात समझ में आ गई। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, अगर तलाक की नीयत की है तो तलाक बाइन होगी, जिहार नहीं होगा। क्यों? कहते हैं इसलिए क्योंकि जिहार होने से पहले ही औरत बाइना हो चुकी है। भाई किस तरह, कहते हैं क्या लफ्ज कहे थे, नीयत क्या की है तलाक की, अंति अलैया हराम उनका ज़ाहरी उम्मी, तो अंति अलैया हराम उन तक जैसे ही खावंद पहुंचा तलाक बाइन हो गई, बीवी जुदा हो गई, और अगला लफ्ज का ज़ाहरी उम्मी जब आया तो तलाक बाइन हो चुकी, और वो औरत जिसको तलाक बाइन हो चुकी उससे तो जिहार नहीं हो सकता, तो जिहार लग चला गया। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां जिहार भी साथ हो जाएगा, तलाक भी और जिहार भी। तो चुनांचे शमसुल अइमा इमाम सरखसी रहमतुल्लाह ने इस ये मसला जिक्र फरमाया और वो फिर ये एतराज करते हैं, ये एतराज जिक्र फरमाते हैं कि जब तलाक बाइन हो गई फिर तो जिहार का महल ही ना रहा। तो उलमा फरमाते हैं इसको इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के उस कौल पर महमूल किया जाएगा कि तलाक बाइन के बाद भी जिहार हो सकता है। इस मसले को इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के उस कौल पर महमूल किया जाएगा कि उनके नजदीक तलाक बाइन के बाद भी इद्दत के अंदर खावन जिहार कर सकता है, तब ही यह मसला तलाक के साथ साथ जिहार साबित हो सकता है, वरना तो तलाक बाइन के बाद तो जिहार नहीं हो सकता। वैसे भाई तो उनके इस कौल को लिया जाए कि तलाक बाइन के बाद भी जिहार हो सकता है, तो फिर इस तौजीह पर यह दोनों चीजें हो जाएंगी। भाई तो कहते हैं गैर अन्ना इंदा मोहम्मदिन रहमहुल्ला इलावा इसके कि इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला के नजदीक इजान अवद तलाका कि जब खावन ने तलाक की नीयत की तो ला यकून जिहारन तो जिहार नहीं होगा बल्कि सिर्फ तलाक होगी। वाइंदा अबी यूसुफ रहमहुल्ला यकून नानी जमीआ और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला के नजदीक ये दोनों हो जाएंगे जिहार भी और तलाक भी। वक़द उरिफ़ा फी मौज़िहि और तहकीक इस बात को जाना गया है फी मौज़िहि अपने मकाम में, यानी इसको जिक्र किया है इमाम सरख्सी ने अपनी किताब मबसूत में। जैसे एक मबसूत किताब इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की है इसी तरह मबसूत किताब इमाम सरख्सी की भी है, तो उन्होंने इसको जिक्र फरमाया है भाई। और मैंने बताया कि इसको किस पर महमूल करेंगे, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह की उस रिवायत पर कि उनके नजदीक तलाक बाइन वाली से भी जिहार जायज है, उसी रिवायत पर ये दोनों चीजें हो सकती हैं, वैसे दोनों नहीं हो सकती। तो कहते हैं वक़द उरिफ़ा फी मौज़िहि और इस बात को अपने मकाम पर जाना गया है वली अबी हनीफ़ा रहमतुल्लाह और इमाम साहब की दलील ये है, इमाम साहब फरमाते थे इससे जिहार ही होगा, बाकी कोई नियत करे भी वो सब लग्व हैं भाई, उनका एतबार नहीं, क्योंकि ये लफ्ज जिहार में सरीह हैं, जब ये जिहार में सरीह हैं तो जिहार ही होगा, इसमें तलाक वगैरह का एहतमाल नहीं है भाई। तो कहते हैं वली अबी हनीफा रहमतुल्लाह और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहु सरीहुन फी ज़िहारी कि खावन के ये अल्फाज जिहार के बारे में सरीह हैं, फला यहतमिलु गैरहू तो ये जिहार के अलावा का एहतमाल नहीं रखते। सुम्मा हुआ मुहकमुन फयुरद्दु तहरीमु इलैह खावन ने क्या कहा अंति अलैया हरामुन का ज़हरी उम्मी, तो इमाम साहब फरमाते हैं का ज़हरी उम्मी ये तो जिहार के अल्फाज हैं, इनमें जिहार के अलावा और कोई माना ही नहीं है, तो यह लफ्ज हुए मोहकम। मोहकम किसे कहते हैं, वो लफ्ज जिसका माना मुतायन हो, जिसके अंदर और एहतमाल न हो, तो का जहरी उम्मी ये जिहार के अंदर मोहकम है, पक्का है, इसके अंदर और कोई माना नहीं है। जबकि माकबल वाले अल्फाज अंति अलैया हरामुन उसके अंदर तलाक का भी एहतमाल, उसके अंदर ईला का भी एहतमाल और जिहार का भी एहतमाल, जिहार में भी तो हराम हो जाती है बीवी, तो अंति अलैया हराम उनके अंदर ईला का भी एहतमाल, तलाक का भी एहतमाल, जिहार का भी एहतमाल, तो वो हुआ मुहतमल। तो अंति अलैया हराम उन क्या हुआ मुहतमल, और का ज़हरी उम्मी ये क्या है मुहकम, और मुहतमल को भी मुहकम पर ही महमूल किया जाता है क्योंकि मुहकम के अंदर तो और कोई माना नहीं, लेकिन मुहतमल के अंदर तो इसका माना भी मौजूद है, तो इस मुहतमल को इसी मुहकम पर महमूल कर लेंगे जैसे कि और मकामात पर इसी तरह किया जाता है। तो कहते हैं सुम्मा हुआ मुहकम उन फिर ये लफ्ज जो है ये जिहार वाला ये मुहकम है, फयुरद्दु तहरीमु इलैही तो तहरीम को भी इसी की तरफ लौटा देंगे कि उससे भी इसी की हुरमत मुराद है, तो अंति अलैया हराम उनसे भी जिहार वाली हुरमत ही मुराद है, कोई अलग हुरमत मुराद नहीं है भाई। आगे देखिए قال ولا يكون الزهار الا من الزوجتي قال और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं वला यकून الزهار الا من الزوجتي के जिहार नहीं हो सकता मगर अपनी बीवी से ही, حتى لو ظاهر من امته لم يكن مظاهرا यहां तक कि अगर आका ने अपनी बांदी के साथ जिहार किया और बांदी से कहा अंति अलैया का ज़हरी उम्मी तो लम यकुन मुज़ाहिरन तो ये जिहार करने वाला नहीं। भाई क्या वजह है बांदी से क्यों नहीं जिहार हो सकता, कहते हैं भाई कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वल्लदीना युज़ाहिरूना मिन निसाइहिम, वो लोग जो जिहार कर लेते हैं अपनी बीवियों से। मालूम हुआ जिहार अपनी बीवी से हो सकता है, बांदी से नहीं हो सकता। तो कहते हैं लिकौलिहि तआला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, मिन निसाइहिम वलिअन्नल हिल्ला फिल अमति ताबिउन, और नीज इसलिए क्योंकि हलाल होना बांदी में ताबे होता है। भाई एक तो नकली दलील जिक्र कर दी कि बीवी से जिहार हो सकता है बांदी से नहीं, क्योंकि कुरान में क्या जिक्र आया है, वल्लदीना युज़ाहिरूना मिन निसाइहिम, और दूसरी अकली दलील कहते हैं इसलिए क्योंकि बांदी जो है बांदी के अंदर हिल्लत ताबे होती है, बांदी के अंदर हिल्लत ताबे होती है। याद रखो जब कोई शख्स बांदी खरीदता है तो वहां सोहबत मकसूद नहीं होती, असल में उसका मालिक बनना मकसूद होता है, असल मालिक बनना मकसूद है, खरीद कर मालिक बन जाएगा। तो बांदी से अमूमन खिदमत ली जाती है, घर के कामकाज वो करती है, तो वहां असल मकसूद उसका मालिक बनना है। हां तबअन सोहबत भी जायज हो जाती है क्योंकि आका उसका मालिक है भाई, तो वहां असल मकसूद सोहबत नहीं बल्कि असल मकसूद खिदमत है और उसका मालिक बनना मकसूद है। जबकि बीवी, बीवी के साथ जो निकाह किया जाता है वहां मकसूद ही यह होता है कि वह उसके लिए हलाल हो जाए, सोहबत जायज हो जाए। तो लिहाजा बांदी और बीवी एक दूसरे से अलग हैं, बीवी के अंदर मकसूद ही सोहबत होती है और बांदी के अंदर सोहबत मकसूद नहीं, लिहाजा जो हुक्म बीवी का है वो हुक्म बांदी को नहीं दिया जा सकता। भाई एक जैसी चीजों का हुक्म एक होता है, दो मुख्तलिफ चीजों का हुक्म एक नहीं होता। तो यहां बांदी बीवी से मुख्तलिफ है, निकाह के जरिए बीवी में मकसूद ही उसका हलाल होना है, जबकि बांदी में खरीदते हुए उस असल मकसूद उसका हलाल होना नहीं होता। भाई तो कहते हैं वली अन्नल हिल्ला फिल अमति ताबिउन, और नीज इसलिए क्योंकि हलाल होना बांदी में ताबे होता है। फला तलहक बिल मनकूहति, लिहाजा ये मनकूहा यानी बीवी के साथ लाहिक नहीं होगी, बीवी वाला हुक्म इसको नहीं दिया जाएगा। बीवी के साथ तो जिहार किया जा सकता है लेकिन बांदी से जिहार नहीं किया जा सकता। वली अन्न जिहार मनकूल अनी तलाकी, दूसरी अकली वजह जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं भाई जिहार तो जमाने जाहिलियत में तलाक शुमार किया जाता था और तलाक से इसको नकल कर लिया गया, तलाक से इसको तहरीम मुअक्कत की तरफ नकल कर लिया गया कि कुछ वक्त के लिए हुरमत आती है, जबकि बांदी के अंदर तो तलाक है ही नहीं, तो वहां जिहार भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वाली अन्न जिहार मनकूल यानी तलाकी, और इसलिए क्योंकि जिहार जो है इसको तलाक से नकल किया गया है। वला तलाक फिल ममलूकती, और बांदी के अंदर तो तलाक नहीं होती लिहाजा इसमें जिहार भी नहीं हो सकता। आगे देखिए फइन तज़व्वजा इमरअतन बिग़ैरि अमरिहा सुम्मा ज़ाहरा मिन्हा सुम्मा अजाज़तिन निकाह फ़ज़िहारु बातिलुन। सूरत मसला ये, एक शख्स ने एक औरत से निकाह कर लिया उसकी इजाजत के बगैर, यानी निकाह में वो फजूली है, वो शख्स क्या है, फजूली है औरत की तरफ से। मैंने आपको बतलाया था कि गैर मुतअल्लिका आदमी जो आपकी तरफ से कोई अक़द करे उसको फजूली कहते हैं, फजूली फजल से है, जायद जायद। मसलन जैसे जैद ने आपकी गाड़ी फरोख्त कर दी, बेच दी, तो अब जैद को तो आपने वकील नहीं बनाया कि आपकी गाड़ी बेच दे, तो ये जैद फजूली हुआ, क्या हुआ, फजूली। तो फजूली जब कोई तसरुफ करे तो वो साहिब इख्तियार की इजाजत पर मौकूफ है। जैद ने आपकी गाड़ी बेची है, अगर आप इजाजत देंगे तो यह बै मुनाकिद हो जाएगी, अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो यह बै भी मुनाकिद नहीं होगी। अब सूरत यह, एक शख्स ने फजूली बनकर एक औरत से निकाह कर लिया कि उसने साथियों के सामने बैठकर कहा मैंने फुला औरत से अपना निकाह कर लिया, और दूसरे साथी ने कबूल कर लिया कि मैं उस औरत की तरफ से कबूल करता हूं, और फिर उस औरत ने अभी इजाजत नहीं दी कि इसने उस औरत से जिहार कर लिया जी। क्या कर लिया, जिहार। बाद में इस औरत को निकाह की खबर पहुंची, उसने इजाजत दे दी, तो क्या वो जिहार जो इसने निकाह के बाद किया था क्या वो जिहार हो गया, कहते हैं नहीं वो जिहार बातिल है, वो जिहार बातिल है, उसका कोई एतबार नहीं। भाई किस तरह बातिल है, कहते हैं भाई जिहार किसे कहते हैं, हलाल औरत को हराम औरत के साथ तशबीह देना जी। हलाल औरत को हराम औरत के साथ तशबीह देना, और जब इसने जिहार किया उस औरत ने तो अभी तक इजाजत ही नहीं दी थी, वो तो इसके लिए हलाल ही नहीं हुई थी, तो हलाल की तशबीह हराम के साथ लाजिम नहीं आई। और नीस जिहार के अंदर झूठ होता है, जिहार में क्या कहता है, जिहार में झूठ होता है कि तू मुझ पर इसी तरह हराम है जैसे मेरी मां हराम है, हालांकि ये तो झूठ है, बीवी तो इंसान पर हराम नहीं होती, लेकिन उस औरत से तो अभी निकाह ही नहीं हुआ, जब निकाह नहीं हुआ तो वो भी हराम है, जब वो हराम है तो कह रहा है वो मुझ पर इसी तरह हराम है जैसे मेरी मां हराम है। ये तो इस वक्त सच है भाई, क्या है, सच है, झूठ भी नहीं है, बात समझ में आ गई। लिहाजा अगर एक औरत से निकाह किया है और अभी उसने इजाजत नहीं दी, इसने जिहार भी कर लिया, तो जिहार बातिल है, बाद में वो औरत निकाह की इजाजत दे भी दे, जिहार एक मर्तबा बातिल हो चुका है, वो दोबारा सही नहीं हो सकता। तो कहते हैं फइन तज़व्वज इम्रअतन बिगैरी अम्रिहा, और अगर किसी शख्स ने निकाह कर लिए किसी औरत से बिगैरी अम्रिहा उसके हुक्म के बगैर, सुम्मा ज़ाहरा मिन्हा फिर उसके साथ जिहार कर लिया, सुम्मा अजाजत इन निकाह फिर उस औरत ने निकाह की इजाजत दे दी, फज़िहारु बातिलुन तो जिहार बातिल है, लिअन्नहु सादिकुन फी तशबीह वक्त तसर्रुफी, इसलिए क्योंकि वो शख्स जो है तसर्रुफ के वक्त तशबीह में सच्चा है, जिस वक्त वो जिहार वाला तसर्रुफ कर रहा है वो तशबीह में सच्चा है, वो औरत भी इस पर इसी तरह हराम है जैसे इसकी मां इस पर हराम है भाई। फलम यकुम मुनकरम मिनल कौली, तो लिहाजा ये नापसंदीदा कौल न हुआ, वह जिहार उलैस बिहक मिन हुकूकी हत्ता यतवक्कफा, इस पर इश्काल होता है कि निकाह तो इसने कर लिया है इस औरत से, अगरचे उस औरत की इजाजत पर मौकूफ है यह निकाह, तो जैसे ये निकाह इस औरत की इजाजत पर मौकूफ है तो यूं करना चाहिए, ये जिहार को भी इस औरत की इजाजत पर मौकूफ कर देना चाहिए जी। आप कह रहे हैं ये जिहार बातिल है, इसके बजाय क्या कहना चाहिए कि ये जिहार मौकूफ है औरत की इजाजत पर, जब औरत इजाजत देगी निकाह हो जाएगा, और निकाह हो जाएगा तो जिहार भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो उसका जवाब दे रहे हैं साहिबे हिदाया कि नहीं भाई, जिहार को निकाह की इजाजत पर मौकूफ नहीं कर सकते, क्योंकि जिहार निकाह के हुकूक में से नहीं है, जिहार निकाह के हुकूक में से नहीं है, एक चीज निकाह के हुकूक में से हो वो तो निकाह की इजाजत पर मौकूफ हो सकती है, लेकिन एक चीज जो निकाह के हुकूक में से ही नहीं है वो निकाह की इजाजत पर मौकूफ नहीं हो सकती। ये यूं कहो कि निकाह तो एक मशरूअ चीज है, जायज चीज है, और जिहार तो एक ममनूअ चीज है शरअन। भाई ममनूअ क्यों है, क्योंकि नापसंदीदा कलाम है और झूठ है भाई, तवज्जो है, तो निकाह मशरूअ चीज है और जिहार गैर मशरूअ चीज है, और एक मशरूअ चीज पर गैर मशरूअ चीज मौकूफ नहीं हो सकती। अलबत्ता इसके मुकाबले में अगर एक शख्स ने किसी का गुलाम गसब कर लिया, तवज्जो से सुनो, एक शख्स ने किसी का गुलाम गसब कर लिया यानी छीन लिया, और फिर गासिब ने यह गुलाम आगे किसी को बेच दिया, मसलन जैद के हाथ बेच दिया, जैद ने यह गुलाम खरीदा, उसे तो नहीं पता कि यह गुलाम यह छीन कर लाया है, जैद ने वह गुलाम खरीद लिया और जैद ने गुलाम को आजाद कर दिया, तो याद रखो फुकहा फरमाते हैं यह गुलाम आजाद नहीं, क्योंकि ये गुलाम ये गासिब का नहीं था, ये गुलाम तो वो जिस शख्स से ये छीन कर लाया है उसका है, तो अगर वो शख्स जिसका गुलाम था अगर उसने इस बैअ की इजाजत दे दी, ये जो गासिब ने बैअ की है जैद के साथ, अगर मगसूब मिनहु वो शख्स जिससे गुलाम को छीना गया था, वो जो मालिक है असल गुलाम का, अगर उसने इस बैअ की इजाजत दे दी तो ये बैअ नाफिस हो जाएगी, और जब ये बैअ नाफिस हो जाएगी तो जैद का गुलाम को आजाद करना भी नाफिस हो जाएगा, लेकिन अगर उसने इजाजत ना दी तो ये जैद का ये अताक भी नाफिस नहीं। तो देखो वजह ये कि यहां पर जैद जिसने गुलाम को खरीदा है उसका मालिक बनना मौकूफ हो गया उस आका की इजाजत पर, और मालिक बनने के हुकूक में से यह हक भी है कि मालिक जब चाहे गुलाम को आजाद कर सकता है, तो चूंकि एताक मिल्कियत के हुकूक में से है, या यूं को बैअ के हुकूक में से है, खरीदार खरीदने के बाद गुलाम को आजाद कर सकता है, तो लिहाजा वहां तो वहां तो जैद की मिल्कियत जैसे इजाजत पर मौकूफ है इसी तरह उसका एताक भी इजाजत पर मौकूफ हो जाएगा, लेकिन जिहार के अंदर ऐसा नहीं है क्योंकि जिहार वो निकाह के हुकूक में से नहीं है। तो कहते हैं वह जिहार उलैस भी हक मिन हुकूक ही, और जिहार जो है वह निकाह के हुकूक में से कोई हक नहीं है। हता या तवक्कफा, यहां तक कि वो इस निकाह पर मौकूफ हो जाए। बिखिलाफ ये एताकिल मुश्तरी मिनल गासिबी, तर्जमा यहां तवज्जो से सुनो भाई, बिखिलाफ ये एताकिल मुश्तरी मिनल गासिबी, बखिलाफ आजाद करना अल मुश्तरी उस शख्स का जिसने खरीदा है, मिनल गासिबी गासिब से, जिसने गासिब से खरीदा है उसका एताक जो है वो मौकूफ रहेगा, वो साहिब हक इजाजत देगा तो ये एताक नाफिज हो जाएगा। तो कहते हैं बिखिलाफ एताक अल मुश्तरी मिनल गासिबी, बखिलाफ आजाद करना उस शख्स का जिसने खरीदा है मिनल गासिबी गासिब से, लिअन्नहु मिन हुकूक अल मिल्की, इसलिए क्योंकि ये एताक जो है ये मिल्कियत के हुकूक में से है। तो जब मिल्कियत उसकी इजाजत पर मौकूफ है तो एताक भी उसकी इजाजत पर मौकूफ होगा भाई। वमन काला ली निसाई ही अंतुन अलैया का जहरी उम्मी काना मुजाहिरा मिन हुन न जमीआ। सूरत मसला ये, एक शख्स की तीन या चार बीवियां हैं, वो उन सब से कहता है अंतुन अलैया का जहरी उम्मी, तुम सब मुझ पर इसी तरह हो जैसे मेरी मां की पुश्त। तो याद रखो सबसे जिहार हो गया। अब वो जिस औरत को भी वो अपने लिए हलाल करना चाहता है तो कफारा देना पड़ेगा, और वो चार बीवियां हैं मसलन, चारों को अगर वो अपने लिए हलाल करना चाहता है तो चार कफारे देने पड़ेंगे। जबकि इसके मुकाबले में अगर एक शख्स ने अपनी चार बीवियों से इकट्ठा ईला किया कि वल्लाह मैं तुम सब से चार महीने तक सोहबत नहीं करूंगा, और फिर अब वो चार महीने तक सोहबत नहीं करेगा तो सबको तलाक हो जाएगी, लेकिन अगर वो रुजू करना चाहता है तो और सबको हलाल करना चाहता है तो सबसे सोहबत कर ले, और इस पर एक ही कफारा आएगा जी। इस पर एक ही कफारा आएगा भाई। क्या वजह है? जिहार के अंदर आप कहते थे चार बीवियां तो चार कफारे आएंगे, और यहां आप कहते हैं एक ही कफारा काफी है, हालांकि चार बीवियों से उसने ईला किया है। तो जवाब यह कि यहां उसने एक ही कसम खाई है, एक ही कसम खाई है, तो सिर्फ एक मर्तबा अल्लाह के नाम की बेहुरमती लाजिम आ रही है, लिहाजा एक ही कफारा देना पड़ेगा भाई। तो कहते हैं वमन काला लिनिसाई ही, और जिस शख्स ने अपनी बीवियों से कहा अंतुन अलैया का जहरी उम्मी, के तुम सब मुझ पर इसी तरह हो जैसे मेरी मां के पुश्त, काना मुजाहिरम मिन हुन न जमीआ, तो वो उन सब से जिहार करने वाला होगा। लिअन्नहु अज़ाफ अज़िहार इलैहिन्ना, इसलिए क्योंकि उसने जिहार की निस्बत की है उन सब की तरफ। फसार कमा इदा अज़ाफत तलाका, तो ये इसी तरह है जैसे उसने तलाक की निस्बत की हो। खावन अगर अपनी बीवियों से कहता है, चार बीवियां हैं उन सबको कहता है अंतुन न मुतल्लकातुन या अंतुन न तवालिको, तो सारों को तलाक हो जाएगी, एक एक तलाक। बात समझ में आ गई? तो जैसे तलाक की निस्बत जितनी बीवियों की तरफ करेगा सब पर तलाक वाके होगी, तो जिहार की भी निस्बत जितनी बीवियों की तरफ करेगा सब पर जिहार आ जाएगा भाई। तो जितनी बीवियों की तरफ जिहार की निस्बत करेगा तो उन सब के बारे में जिहार हो जाएगा भाई। वह अलैहि लिकुल्लि वाहिदतिन कफारतुन, और खावन पर उनमें से हर एक के लिए कफारा है, कफारा देना पड़ेगा। लिअन्नल हुरमत तस्बुतु फी हक्की कुल्लि वाहिदतिन, इसलिए क्योंकि हुरमत साबित हो गई इनमें से हर एक के हक में। वल कफारतुल इन्हाइल हुरमति, और कफारा जो है वह हुरमत को खत्म करने के लिए है। अनहा युन्ही इन्हा का क्या माना? खत्म करना। वल कफारतुली इन्हा इल हुरमती, और कफारा जो होता है वो हुरमत को खत्म करने के लिए होता है। फतताअद्दु बिताअद्दुदिहा, तो हुरमत के मुताअद्दिद होने से कफारा भी मुताअद्दिद होगा। बिखिलाफ इल ईला मिन्हुन्ना, बखिलाफ उन सब से ईला करने के। लिअन्न अल कफारत फीहि लिसियानति हुरमति लिस्मी, इसलिए क्योंकि ईला के अंदर जो कफारा आता है लिसियानति हुरमति लिस्मी, वो अल्लाह के नाम की हुरमत की हिफाजत के लिए है, अल्लाह के नाम की हुरमत को बचाने के लिए है। वलम यतअद्दद ज़िक्रुल इस्मी, और अल्लाह के नाम का जिक्र तो मुतअद्दिद नहीं है, एक ही इसने कसम खाई है। और अगर इसने हर एक के लिए अलग अलग कसम खाई है फिर हर एक के लिए अलग अलग कफारा भी देना पड़ेगा भाई। फसलुन फिल कफारती, ये फसल है कफारे के बयान में। काला व कफारतु जिहार इत्कु रकबतिन, और जिहार का कफारा जो है इत्कु रकबतिन ऐ इताकु रकबतिन, एक गुलाम या बांदी का आजाद करना है। तो यहां इत्क किस माना में है? इताक के माना में है, तो ये मजाजी माना में है। तो काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वह कफारत उस जिहार इत्कु रकबतिन, और जिहार का कफारा जो है एक रकबा का आजाद करना है, यानी गुलाम या बांदी का। फैलम या जीत, पस अगर गुलाम या बांदी मुयसर ना हो, यानी गुलाम या बांदी को वो ना पाए, जैसे आजकल के जमाने में गुलाम और बांदियां, गुलाम और बांदियों का वजूद ही नहीं। फसिया मुशहरैनी मुतताबिअैनी, तो दो मुतवातिर महीनों के रोजे हैं। फैलम यस्ततिअ, अगर इसकी भी वो इस्तेताअत नहीं रखता, खावन बहुत ज्यादा बीमार है। फइतामु सित्तीन मिस्कीना, तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, दो वक्त का खाना। लिन्नस सिलवारिदी फीही, उस नस की वजह से जो इस बारे में वारिद हुई है, वो जो आयत जो मैंने जिक्र कर दी। फइन्नहु युफीदुल कफारत अला हादत तरतीबी, इसलिए क्योंकि वो नस जो है वो कफारे का फायदा देती है इसी तरतीब पर कि गुलाम या बांदी आजाद करे। अगर गुलाम या बांदी मुयसर ना हो तो फिर 2 माह के मुसलसल रोजे हैं, और अगर उसकी भी इस्तेताअत ना हो तो फिर 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाना पड़ेगा। तो कहते हैं फइन्नहु युफीदुल कफारत अला हादत तरतीबी, इसलिए क्योंकि नस भी कफारे का फायदा दे रही है इसी तरतीब पर। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वह कुल्लु दालिका कब्ल अल मसीसी, और ये सब हाथ लगाने से पहले होगा, यानी ये कफारा सोहबत से पहले देना पड़ेगा। भाई मसीस, मस यमुस्सु, मसीस का माना है छूना, छूना हाथ लगाना। तो कहते हैं वकुल्लु ज़ालिका क़ब्ल अल-मसीसी, और ये सब जो है छूने से पहले होगा। वहादा फिल इताक़ वस्सौम ज़ाहिरुन, अच्छा भाई आयत के अंदर आया था गुलाम या बांदी का आजाद करना, या इसी तरह 2 माह के मुसलसल जो रोजे हैं उनके साथ तो मिन क़ब्ली अन यतमास्सा की कैद है कि गुलाम या बांदी आजाद करे मिन कबलियां या तमाशा, बाहम एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले, या इसी तरह गुलाम या बांदी ना मिले तो 60 रोजे रखना पड़ेंगे, और वो भी मिन कबलियां या तमाशा की कैद वहां पर भी मौजूद है। लेकिन 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, वहां तो मिन कबलियां या तमाशा की कैद मौजूद नहीं। लेकिन साहिब कुदूरी क्या फरमा रहे हैं कि तीनों के अंदर जरूरी है कि तीनों में से हर एक को सोहबत से पहले होना चाहिए। अब उसकी वजह जिक्र करेंगे साहिबे हिदाया। कहते हैं वहादा फिल इताक वस्सौम ज़ाहिरुन, और ये इताक और रोजे के अंदर तो ये बात जाहिर है कि इनमें मिन कबल ये तमाशा की कैद है, लिहाजा इनको सोहबत पर मुकदम होना चाहिए। तो कहते हैं वहादा फिल इताक वस्सौम ज़ाहिरुन, और इताक और सौम के अंदर तो ये बात जाहिर है। लितंसीसी अलैहि, इस पर तसरी होने की वजह से कि आयत में इसकी तसरी है। वकदा फिल इतामी, और इसी तरह इताम में भी होगा, यानी खाना खिलाने में भी, यानी खाना खिलाना भी सोहबत से पहले होगा। लिअन्न अल कफारत फीहि मुनहियतुन लिल हुरमती, साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि खाना खिलाना भी सोहबत से पहले होना चाहिए। वजह यह कि यह कफारा है, और कफारा देगा तो हुरमत खत्म होगी, लिहाजा कफारा पहले हो और सोहबत बाद में हो। कफारा दे देगा तो हुरमत खत्म हो जाएगी, फिर सोहबत कर सकता है। तो कहते हैं लिअन्न अल कफारत फीहि मुनहियतुन लिल हुरमति, इसलिए क्योंकि इस इज़हार के अंदर कफारा जो है वो हुरमत को खत्म कर देता है। फला बुद्दा मिन तक़दीमिहा अलल वती, लिहाजा जरूरी है कि ये कफारा जो है मुकदम हो वती पर। लियकून अल वतु हलालन, ताकि वती हलाल हो। आगे देखिए, काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, व तुजज़ी उफिल इत्क रकबतुल काफिरतु वल मुस्लिमतु व ذكروا والانثى والصغير والكبير। याद रखो, इंदल अहनाफ कुरान में कफारा जिहार के अंदर मुतलक रकबा का जिक्र है। फतहरीरु रकबतिन, यहां मोमिना की कैद नहीं है। फतहरीरु रकबतिन मोमिना, मोमिना की कैद नहीं, लिहाजा इंदल अहनाफ कफारे के अंदर चाहे मुसलमान गुलाम या बांदी को आजाद किया जाए चाहे काफिर गुलाम या बांदी को आजाद किया जाए दोनों सूरतों में कफारा अदा हो जाएगा। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, यहां पर भी कफारे में वही गुलाम या बांदी आजाद किया जा सकता है जो मुसलमान हो, जो काफिर हो उनको आजाद करने से कफारा अदा नहीं होगा भाई। तो लिहाजा कोई भी गुलाम या बांदी आजाद किया जा सकता है चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो और चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस और चाहे सगीर हो चाहे कबीर। नाबालिग गुलाम को खरीद कर आजाद कर देता है वो भी काफी है भाई। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं व तुजज़ी उफिल इत्की के आजादी के अंदर काफी है अर रकबतुल काफिरतु वल मुस्लिमतु मुसलमान या काफिर रकबा व ज़करु वल उनसा और मुजक्कर और मुअन्नस व सगीर वल कबीर और सगीर और कबीर यानी नाबालिग और बालिग सब इनमें से कोई भी आजाद कर सकता है। लिअन्न अस्मर रकबति युतलकु अला उलाई इसलिए क्योंकि रकबा का इस्म जो है इसका इतलाक इन पर होता है। इद ही इबारतुन अनि ज़ातिल मरकूकिल ममलूक मिन कुल्ली वजहिन इसलिए क्योंकि रकबा जो है इबारतुन ये इबारत है अनि ज़ाति उस ज़ात से अल मरकूकी जो गुलाम है अल ममलूकी ममलूक है मिन कुल्ली वजहिन हर एतबार से वो ज़ात जो गुलाम और ममलूक है हर एतबार से। याद रखो ये मिनकुल्ली वजहिन का ताल्लुक मरकूक के साथ है। मिनकुल्ली वजहिन का ताल्लुक यानी वो जात जो हर एतबार से गुलाम हो और ममलूक हो वो रकबा मुराद है भाई। भाई देखो आपको साहिब हिदाया आगे चलकर बताएंगे कि मुदब्बर उम्मे वलद और मुकातब। मुदब्बर वो गुलाम जिसको आका ने कह दिया कि मेरे मरने के बाद तू आजाद है। उम्मे वलद वो बांदी जिसने बच्चे को जन्म दिया और आका ने कह दिया ये मेरा बच्चा है तो ये उम्मे वलद बन गई। याद रखो ये जो आजादी है ये मुदब्बर का हक बन गई। आका के मरने के बाद इसने हर हाल में आजाद होना है तो ये मरकूक तो है ये गुलाम तो है लेकिन हर एतबार से नहीं। ये हर एतबार से अब गुलाम नहीं रहा अब ये अनकरीब आजाद होने वाला है। जैसे ही आका मरेगा ये आजाद हो जाएगा। आजादी इसका हक बन चुकी है भाई अब इसको कोई फसख नहीं कर सकता। इसी तरह उम्मे वलद है वो बांदी वो भी आका के मरने के बाद आजाद हो जाएगी तो आजादी उसका हक बन चुकी है उसने हर हाल में आजाद होना है कोई उसके इस हक को फसख नहीं कर सकता। तो जब इन्होंने हर हाल में आजाद होना है तो अब ये हर एतबार से गुलाम ना रहे बल्कि बाज एतबार से आजाद हैं यानी आजाद होने वाले हैं भाई। जबकि मुकातब वो गुलाम है जिसे आका ने कह दिया मसलन के दो साल तक हर महीने तुम एक लाख रुपए लेकर आओ तो तुम आजाद हो। ये जो मुकातब है ये गुलाम तो पूरे तौर पर है मरकूक तो कामिल तौर पर है क्योंकि इसका आजाद होना यकीनी नहीं। अगर ये इतना माल ले आया दो साल तक हर महीने बाकायदगी से एक लाख रुपया लाता रहा फिर तो दो साल बाद ये आजाद हो जाएगा और अगर दरमियान में वो आजीज आ गया इस रकम की अदायगी से तो आका काजी के पास चला जाएगा और काजी इस अक्दे किताबत को फसख कर देगा और ये गुलाम पहले जैसा गुलाम बन जाएगा। या काजी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी गुलाम ने खुद ही दो चार महीने कोशिश की लेकिन एक लाख रुपया वो कहां से कमाता भाई। आखिर तंग आकर आजिज आकर कहने लगा ये मेरे बस की बात नहीं है। लिहाजा जब गुलाम अपने आजजी का इजहार कर देगा तो भी अक्दे किताबत खत्म हो जाएगा। जब गुलाम ने कह दिया मैं इतने पैसे नहीं ला सकता तो अक्दे किताबत क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा और ये फिर पहले जैसा आम गुलाम बन जाएगा और जितने पैसे इसने आका को दिए थे वो आका ही के हो गए भाई। तो ये जो मुकातब है देखो इसका आजाद होना यकीनी नहीं। तो ये मरकूक तो कामिल तौर पर है अभी भी बाज एतबार से ये आजाद नहीं। मुदब्बर बाज एतबार से अब क्या हो चुका आजाद और उम्मे वलद भी बाज एतबार से क्या हो चुकी आजाद क्योंकि उनकी आजादी यकीनी है लेकिन मुकातब की आजादी तो यकीनी नहीं लिहाजा वो तो मरकूक है मिनकुल्ली वजहिन हर एतबार से। अलबत्ता ये जो मुकातब है ये ममलूक नहीं है कामिल तौर पर मैंने आपको बतलाया था कि जैसे ही अक्द किताबत किया जाता है साथ ही गुलाम जो है वो अब आजाद लोगों की तरह हो गया, यानी आका इसे जबरदस्ती खिदमत नहीं ले सकता। और अगर मुकातबा औरत है तो फिर आका उससे सोहबत अब नहीं कर सकता। अपनी बांदी से तो इंसान सोहबत कर सकता है लेकिन मुकातबा से अब यह सोहबत नहीं कर सकता। ये जाएगी जाकर पैसे कमाएगी और अदायगी करके अपने आप को आजाद करवाएगी। इसी तरह गुलाम जो है जिसको आका ने मुकातब बनाया है अब वो भी पूरे तौर पर ममलूक न रहा, आजाद आदमियों की तरह हो गया। ये जाएगा और जाकर पैसे कमाएगा और अपने आप को आजाद करवाएगा। आका मुकातब और मुकातबा से जबरन खिदमत नहीं ले सकता। अगर वो खिदमत करते हैं वो उनकी मर्जी है लेकिन जबरन आका उनसे खिदमत नहीं ले सकता। मालूम हुआ ये मुकातब और मुकातबा ये मरकूक तो कामिल तौर पर हैं लेकिन ममलूक कामिल तौर पर ना रहे। अब ये भाई बात समझ में आ गई। तो लिहाजा साहिब हिदाया बतला रहे हैं कि कुरान में आया है फतहरीर रकबतीन, इस रकबा से क्या मुराद है, तो रकबा से क्या मुराद है। साहिब हिदाया बतला रहे हैं इस ही इबारतुन अनिस जाती कि रकबा इबारत है ऐसी जात से अल मरकूक जो मरकूक है मिन कुल्ली वचिन हर एतबार से और अल ममलूक ममलूक भी है। तो याद रखो साहिब हिदाया आगे चलकर आपको बतलाएंगे कि मुदब्बर या उम्मे वलद इनको कफारे के तौर पर आजाद नहीं किया जा सकता। मुदब्बर या उम्मे वलद इसलिए कि इनके अंदर रिकियत कामिल नहीं है, रिकियत नाकिस हो चुकी है, इन्होंने आजाद होना है भाई। हालांकि कामिल रिकियत वाले गुलाम को आजाद करना पड़ेगा कफारे के अंदर, तो मुदब्बर को भी आजाद नहीं कर सकते और उम्मे वलद को भी, अगर आजाद करेंगे भी तो उससे कफारा अदा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने तो वैसे ही कुछ अरसे के बाद आजाद होना है। और मुकातब जो है मुकातब ने अगर कुछ बदले किताबत अदा कर दिया है फिर मुकातब को भी अदा नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसने अभी एक रुपया अदा नहीं किया उससे पहले ही आका उसको आजाद करना चाहता है कफारे के तौर पर। अक्दे किताबत कर लिया वो चला गया पैसे कमाने, दो चार दिन बाद आका को अब कफारा देने की जरूरत पेश आ गई, तो आका उस मुदब्बर को जिसने अभी कोई अदायगी नहीं की उसको कफारे में आजाद कर सकता है। तो ये मुदब्बर मरकूक तो मिनकुल्ली वजहिन है लेकिन ममलूक मिनकुल्ली वजहिन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आजाद किया जा सकता है। लेकिन ये शर्त है इसने कोई पैसा भी अदा ना किया हो। अगर इसने कुछ पैसे अदा कर दिए हैं फिर तो ये मुफ्त में आजाद ना हुआ, कुछ तो बदल भी इसने दे दिया है अपना। हालांकि गुलाम जो आजाद करना है वो खालिस अल्लाह के लिए आजाद करना है पूरा का पूरा, हालांकि यहां तो वो कुछ बदल अदा कर चुका है। देखिए भाई कहते हैं लिअन नस्मर रकबती युतलकु अला हाउलाए, इसलिए क्योंकि रकबा का इसम इन सब पर बोला जाता है, चाहे काफिर हो चाहे मुसलमान, चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस, चाहे नाबालिग हो चाहे बालिग हो, सगीर कबीर सब पर भाई। इद ही इबारतुन अनि जातिल मरकूकिल ममलूक मिन कुल्ली वजहिन, इसलिए क्योंकि यह इबारत है उस जात से जो गुलाम है हर एतबार से और ममलूक है। मैंने बताया मिन कुल्ली वजहिन का ताल्लुक किससे है, मरकूक से, तो वो जात जो मरकूक है हर एतबार से और ममलूक है। व शाफी रहमहुल्ला युखालिफुना फिल काफिरती, और इमाम शाफी रहमहुल्ला हमारी मुखालफत करते हैं काफिरा के अंदर, यानी रकबा काफिरा आजाद नहीं कर सकते, काफिर गुलाम या बांदी को आजाद नहीं कर सकते। वह यकूल और वह फरमाते हैं अल कफारत हक़ुल्लाह ताला कि यह कफारा जो है अल्लाह का हक है, फला यजूज सर्फहु इला अदुविल्लाह, तो जायज नहीं है कि इस अल्लाह के हक को फेर दिया जाए इला अदुविल्लाह अल्लाह के दुश्मन की तरफ। काफिर तो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह की तौहीद का इकरार नहीं करता, लिहाजा उसकी तरफ इस कफारे को फेरना जायज नहीं है भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए वयकूल अल कफारत हक़ुल्लाह ताला, वो फरमाते हैं कि कफारा अल्लाह का हक है, फला यजूज सर्फहु इला अदुविल्लाह, लिहाजा इस अल्लाह के हक को अल्लाह के दुश्मन की तरफ फेरना जायज नहीं। का ज़कात, जैसे कि ज़कात है, ज़कात अल्लाह का हक है तो सिर्फ मुसलमानों को दी जा सकती है, काफिर जो अल्लाह का दुश्मन है उसको नहीं दी जा सकती। वनहनु नकूल, और हम कहते हैं अल मंसूस वाले ही इताकुर रकबती वक़द तहक़्क़ा, हम कहते हैं मंसूस अलैह जो है यानी जिस पर नस लाई गई है इताकुर रकबती, वो रकबा का आजाद करना है, वक़द तहक़्क़ा और तहकीक वो पाई गई। हम कहते हैं कुरान में मुतलक आया है फतहरीरु रकबतिन, उसके साथ मोमिना की कैद नहीं, तो काफिर को भी आजाद करेगा, तो तहरीर रकबा तो पाई गई भाई। तो कहते हैं वनहनु नकूलु, हम कहते हैं अलमनसूस वाले ही एताकुर रकबती, कि वो चीज जिस पर नस लाई गई है वो एताक रकबा है, वकद तहक्कका, और काफिर को भी आजाद करेंगे तो एताक रकबा पाई गई है, वकस्दुहु मिनल एताकि तमकुन मिनत ताअती, और कफारा देने वाले का इरादा जो होगा एताक से अतमकुनु, वो कादिर होना है मिनत ताअती इताअत यानी इस्लाम पर। कफारा देने वाला क्या नियत करता है कि ये काफिर गुलाम या बांदी है, मैं इसको आजाद कर रहा हूं, आप अल्लाह ने इसको आजादी जैसी नेमत दी है तो बतौर शुक्राने के इसको अल्लाह की इताअत करनी चाहिए और इस्लाम कबूल करना चाहिए, इसको इस्लाम कबूल करना चाहिए, क्योंकि गुलामी तो मौत की तरह है भाई, गुलाम के तो कोई हुकूक नहीं होते, उसको तो जानवरों की तरह बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो इसको अल्लाह ने आजादी दी है तो बतौर शुक्र के इसको अब अल्लाह की इताअत करनी चाहिए और मुसलमान होना चाहिए। तो कहते हैं वक़स्दुहु मिनल इताकी, और आका का इरादा इताक के जरिए अतमक्कुनु मिनत ताअती, वो कादिर होना है इताअत पर यानी इस्लाम के जरिए, सुम्मा मुकारफतुहुल मासियता युहालु बिही इला सुई इख्तियारिही। मुकारफत का माना है मुबतला होना, आका तो इस नियत से काफिर को आजाद कर रहा है कि इसको अब मुसलमान होना चाहिए, लेकिन अगर वो फिर भी कुफर पर रहता है तो ये उसका अपना बुरा इख्तियार है, उसका अपना बुरा फैसला है, इसके अंदर आजाद करने वाले का कोई दखल नहीं है भाई। कहते हैं सुम्मा मुकारफतुहुल मासियता, फिर इस मुअतक का मुबतला होना अल मासियता नाफरमानी में यानी गुनाह में यानी कुफर में, सुम्मा मुकारफतुहुल मासियता, फिर इस काफिर गुलाम या बांदी का गुनाह में मुबतला होना यानी कुफर में ही मुबतला रहना, युहालु बिही, इसको हवाले किया जाएगा, इला सू इख्तियारी ही, उसके बुरे इख्तियार की तरफ, कि उसने बुरा फैसला किया, बुरी चीज को इख्तियार किया है भाई। वला तुज्जी उल अमिया उल मकतूअतुल यदैनि अविर रिजलैन, भाई याद रखो कफारे के अंदर गुलाम को आजाद करना है, चाहे काफिर हो चाहे मुसलमान हो चाहे बालिग हो चाहे नाबालिग हो, लेकिन उसकी जिनसे नफा कोई जिनसे नफा खत्म ना हो, मसलन एक गुलाम है अंधा है दोनों आंखों से भाई, उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता, तो इसके तो जिन से नफा ही खत्म हो चुका है, और जब जिन से नफा खत्म है तो यूं समझो बाज एतबार से यह हलाक ही हो चुका है, बाज एतबार से यह क्या है, यह हलाक है। तो हमें तो सही गुलाम आजाद करने का हुक्म है भाई, लिहाजा इस तरह का गुलाम आजाद करें तो उसे कफारा अदा नहीं होगा। यह एक गुलाम है उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, तो चीजों को पकड़ने की जिन से नफा ही खत्म हो चुकी है, तो बाज एतबार से गोया यह हलाक ही हो चुका है। यह एक गुलाम है उसके दोनों पांव कटे हुए हैं, तो उसके चलने का जिन से नफा ही खत्म हो चुका है, तो यूं समझेंगे बाज एतबार से यह हलाक ही हो चुका है भाई। और या एक गुलाम है उसको सुनाई ही नहीं देता बिल्कुल, यानी बचपन से ही बहरा है और गूंगा भी है, क्योंकि जो बचपन से बहरा हो वो गूंगा भी होता है, क्योंकि उसने कभी अल्फाज सुने ही नहीं तो बोल भी नहीं सकता भाई। तो लिहाजा अगर कोई बचपन से ही बहरा है तो इसको भी आजाद नहीं कर सकता। हां अगर कोई ऊंचा सुनता है इस गुलाम को आजाद किया जा सकता है। अगर किसी का एक हाथ कटा हुआ है दूसरा हाथ तो ठीक है, चीजों को पकड़ने का जिनसे नफा तो खत्म नहीं है भाई, लिहाजा उसको भी आजाद कर सकते हैं। एक पांव कटा हुआ है उसको भी आजाद कर सकते हैं। मुखालिफ तरफ से एक तरफ का हाथ कटा है दूसरी तरफ का पांव कटा हुआ है इसको भी आजाद कर सकते हैं, क्योंकि न चलने का जिनसे नफा खत्म है न चीजों को पकड़ने का जिनसे नफा खत्म है। एक हाथ भी सलामत है चीजों को पकड़ सकता है, एक पांव भी सलामत है चल भी सकता है भाई। देखो याद रखो एक ही जानिब के हाथ और पांव कटे हों यह शख्स नहीं चल सकता, इसका चलने का जिनसे नफा ही खत्म हो गया। वजह यह कि अगर हाथ एक तरफ का कटा हुआ है और पांव दूसरी तरफ का, तो जिस तरफ का पांव कटा है उस तरफ का तो हाथ सही है, उस तरफ लाठी पकड़कर वो चल लेगा, लेकिन अगर उसी तरफ का हाथ भी कटा है और उसी तरफ का पांव भी कटा है तो ये लाठी पकड़कर भी नहीं चल सकता, तो ऐसा गुलाम भी जायज नहीं। तो हासिल कलाम क्या, एक हाथ या एक पांव कटा हो या मुखालिफ समत के हाथ पांव कटे हों तो इसको कफारे में आजाद करना जायज है, यानी जिन से नफा खत्म नहीं होना चाहिए। कहते हैं वला तुझे उल आमिया, आमिया कहते हैं अंधी, भाई अंधी रकबा की बात चल रही है ना, इसे मुअन्नस सिफत लाए, वला तुझे उल आमिया और अंधी रकबा काफी नहीं है, वलल मकतू अतुल यदैनी अविर रिजलैन और ना ही वो रकबा जिसके दोनों हाथ या दोनों पांव कटे हुए हों, लिअन अल्फा इत जिनसुल मनफाती, इसलिए क्योंकि इसका जिनसे नफा ही फौत हो चुका है, वही अल बसरु अविल बच्छु अविल मशियो और वो देखना है, आमिया है तो उसमें देखने का नफा खत्म, अविल बच्छु पकड़ना जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं उसके पकड़ने का नफा खत्म है, और जिसके दोनों पांव कटे हैं उसके चलने का नफा खत्म है। तो कहते हैं लिअन्न अल्फा इत जिनसुल मनफाती, इसलिए क्योंकि ये फौत कर चुका है जिनसे नफा को हुई, वही अल बसरु और वो देखना है, अविल बच्छु या पकड़ना है, अविल मशयु या चलना है, वह हुल मानियो और ये जिनसे नफा का फौत हो जाना ये मान्य है, ये कफारे से मान्य है भाई। अम्मा इद अख्तलतिल मनफातु फहुवा गैरु मानिइन, और अगर नफे के अंदर खलल आ जाए, खराबी आ जाए, यानी एक हाथ कटा है, अगर पकड़ने के नफे में कमी आ गई है लेकिन बहरहाल दूसरे हाथ से तो चीजें पकड़ सकता है, या एक आंख से दिखाई नहीं देता दूसरी आंख से तो दिखाई देता है, या एक पांव कटा हुआ है लेकिन दूसरा पांव तो मौजूद है, तो नफे के अंदर खलल आया है, नफा पूरे तौर पर फौत नहीं हुआ। तो कहते हैं वह अम्मा इद अख्तलतिल मनफातु, और अगर नफे में खलल आया है, खराबी आई है, फहुवा गैरु मानिइन, तो ये मानिअ नहीं है, हत्ता यजूजुल औराउ, याद रखो यहां पर भी हत्ता नसब नहीं देगा क्योंकि हत्ता के नसब देने की यहां शराइत पूरी नहीं, लिहाजा यजूजू पर रफा पड़ेंगे। तो कहते हैं हत्ता यजूजुल औराउ, यहां तक के औरा जायज है, औरा कहते हैं काना जिसे एक आंख से दिखाई नहीं देता, और औरा मुअन्नस सिफत जिक्र की, अई अर्रकबतुल औरा भाई। तो कहते हैं हत्ता यजूजुल औरा, यहां तक के कानी रकबा जो है वो जायज है, वह मक्तूअतु इहदल यदैनी व इहदर रिजलैनी मिन खिलाफिन, और इसी तरह वो रकबा भी जिसका एक हाथ और एक पांव कटा हुआ है, मिन खिलाफिन मुखालिफ जानिब से, लिअन्नहु माफात जिनसुल मनफाती, इसलिए क्योंकि इसका जिनसे नफा फौत नहीं हुआ, बल इख्तलत बल्कि उसमें खलल आया है, बिखिलाफ मा इदा कानता मक्तूअतैन मिन जानिबिन वाहिदिन, बखिलाफ इस सूरत के कि ये हाथ और पांव कटे हुए हों, मिन जानिबिन वाहिदिन एक ही जानिब से, हैसु ला यजूजु क्योंकि ये जायज नहीं है, लिफवात जिन्स मनफातिल मशी चलने का जो जिनसे नफा है उसके फौत हो जाने की वजह से, इज हुआ अलैहि मुतअज्जिरुन इसलिए क्योंकि चलना अब इस पर मुतअज्जिर है, यह शख्स चल नहीं सकता जिसका हाथ और पांव एक ही तरफ के कटे हुए हैं, वयजूजुल असम्मु और बहरा जायज है, असम स्वाद के साथ किसे कहते हैं, बहरे को, वयजूजुल असम्मु और बहरा जायज है, वल कियासु अल्ला यजूजा और कियास को यह तकाजा करता है कि यह बहरा जायज नहीं होना चाहिए, वह हुआ रिवायतुन नवादिरी और ये नवादिर की रिवायत है कि जायज नहीं होना चाहिए, लिअन्न अल्फा इत जिनसुल मनफाती इसलिए क्योंकि जिनसे मनफियत को फौत कर चुका है, इल्ला अन्नस्तहसन्नल जवाजा मगर हमने जवाज को पसंद किया है, जवाज को इस्तेहसान कहा है, हमने इसको पसंद किया है, लिअन्न असलल मनफाती बाकिन इसलिए क्योंकि असले नफा बाकी है, भाई असले नफा किस तरह बाकी है, वो बहरा है। कहते हैं फईन नहू इदा सीहा अलैही, सीहा साहा या सीहू के माने होते हैं चीखना स्वाद के साथ, फईन नहू इदा सीहा अलैही इसलिए क्योंकि बहरे पर जब चीखा जाता है, लयस्मऊ तो वो सुन लेता है, यानी खूब ऊंची आवाज से बोले तो वो सुन लेता है, तो इस तरह का बहरा जायज है। हत्ता लौ काना बिहालिन, हत्ता कि अगर ये बहरा ऐसे हाल पर हुआ कि ला यस्मऊ असला के सिरे से वो सुनता ही नहीं है, बि अन वुलिदा असम्मा बाई सूरत के वो बहरा पैदा हुआ है, वह हुअल अखरसु और वो गूंगा है, जब पैदाइशी बहरा है, वह हुअल अखरसु और वो गूंगा है, ला युजजी उहू तो ये रकबा उसके लिए काफी नहीं है, वला यजूज मकतू इबहा मयिल यदैनी इबहाम अंगूठे को कहते हैं, तो असल में था इबहामैनी, तस्निया है, फिर नून इजाफत से गिर गया। कहते हैं वला यजूज मक्तू इबहामैल यदैनी, और दोनों हाथों के दोनों अंगूठे जिसके कटे हुए हों वो जायज नहीं है। लिअन्न कुव्वतल बत्शी बिहिमा, इसलिए क्योंकि चीजों को पकड़ने की कुव्वत अंगूठों के जरिए होती है। फबिफवातिहा यफूतु जिन्सुल मनफाती, तो अंगूठों के फौत हो जाने से जिनसे नफा फौत हो जाता है। हाथों में पकड़ने की कुव्वत क्यों है? अंगूठे की वजह से। एक तरफ उंगलियां होती हैं तो दूसरी तरफ अंगूठा होता है, अगर अंगूठा कटा होगा तो हम कोई चीज नहीं पकड़ सकते। लिहाजा जिसके दोनों अंगूठे कटे हुए हैं दोनों हाथों के, तो उसको भी कफारे में आजाद करना काफी नहीं है, उससे कफारा अदा नहीं होगा। बात समझ में आ गई? चलिए बस, बिहादा हुआ अल मराम, अल्लाह आलम बिहकीकतिल कलाम।